अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे लिए अपने आप को अल्लाह ताला की इस किताब के सामने रख बिठाना और इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरीके से मैनेज करना कि इस वक्त हमारे लिए कोई रुकावट ना बने, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो हमारे और इसके सुनने और सुनाने में रुकावट बने। अल्लाह ताला हमारा ये थोड़ी देर का फोकस होना इसको भी कबूल फरमाए, इसको भी इबादत के लिए जम कर बैठना यानी एतिकाफ की कैफियत में ले आए, बिल्कुल पूरे शऊर और इरादे के साथ आप इन चीज़ों को लीजिए ताकि मैं और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आप देखिए कि इल्म की महफिल के जो आदाब हैं उसमें एक जो खामोशी और हर चीज़ से कट के होना है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि दुनिया का इल्म चाय का कप हाथ में लेकर भी मिल जाता है, एक हाथ में बर्गर और एक में चिप्स लेकर भी एक क्लासरूम में बच्चे बैठ सकते हैं क्योंकि वो दुनियावी उलूम है। उस वक्त आप असल में इल्म भी दुनियावी ले रहे होते हैं, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब दुनियावी उलूम है ना। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा, इल्म जो लेते हैं वो भी दुनिया का, खाना जो खाते हैं वो भी दुनिया की चीज़, ठीक है। अब इसको ले आइए इल्म की इस महफिल पे। अब इस वक्त आप ले रहे हैं इल्म, रूहानी गजा, यानी ये है असल में रूह की गजा। अब अगर इस वक्त आप जिस्मानी तकाजे पूरे करें जिसमें लेटना, सोना, लीन करना, कुछ खाना पीना जो कि रोजे की हालत में तो मुमकिन नहीं, लेकिन कोई भी वजह हो, सिर्फ आज की स्टडी टिप में जो बात आपको देनी है वो क्या है कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात शिर्क से पाक है, उसके साथ कोई दूसरा चल नहीं सकता, इसी तरह अल्लाह ताला की किताब और ख़ास तौर पे जैसे इस वक्त हम इसको अपने सामने खोल कर बैठे सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हमने इंशाल्लाह हर डिस्ट्रक्शन से पाक होकर लेना है। जो करना था कर लिया, अब इंशाल्लाह ताला हम इस किताब के सामने अपने आप को पेश कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि आज पूरा लेंगे तो कल पूरा देंगे। आइए बड़ी मोहब्बत से पारा नंबर 5 को शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स और शैतान की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट इसमें ना आए और हम एक लफ्ज भी मिस ना करें। चंद सेकंड का फ्लक्चुएशन 2-3 आयात को हमसे दूर कराता है और कई दफ़ा एक बड़ा ही अमल का नुक्ता होता है जो सिर्फ हमारे किसी एक मैसेज को चेक करने या भेजने में गुजर जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे फोकस्ड कर दे। शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से वल मुहसनात यानी पारा नंबर 5 शुरू करेंगे दौरे कुरान 2020 2020 में। अल्लाह ताला की रहमत से आज हम 5वीं सीढ़ी पे चलने लगे तो मुहसनात का जो लफ्ज़ है अगर आप देखें तो पारे का पहला ही लफ्ज़ है और अमूमन आप देखते ही हैं कि पारों के नाम पहले लफ्ज़ पे ही हैं इल्ला माशाल्लाह। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो इंशाल्लाह किसी डिटेल तफसीर की क्लास में आप जानेंगे। यहाँ हम लफ्ज़ मुहसनात को देख लेते हैं। मुहसनात का लफ्ज़ जो है ये हसन से है, हा स्वाद नून कले को कहते हैं जिसको हम किला कहते हैं अपनी ज़ुबान में उर्दू में और फोर्ट्रेस भी कहते हैं, सिटाडिल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बेसिकली ये हिसार है। अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, तकरीबन इसके 4 मानी बनते हैं, पाक दामनी, आज़ादी और इसी तरह से किसी के निकाह में मौजूद औरत को हमारे कल्चर में शादी शुदा कहते हैं। ज़रा आज जाकर ये लफ्ज़ शादी शुदा का भी मानी ढूंढिएगा उर्दू और फारसी की डिक्शनरी में, तो फिर आप ख़ुद से सवाल करने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में शादी शुदा हूँ। आप कहेंगे आप ही बता दीजिए जब आपने जिक्र किया है, तो आप देखिए कि शादी शुदा खुश रहने वाले, खुशी वाले जोड़े, शाद आबाद कहते हैं ना, शाद भी रहो आबाद भी रहो, तो शादी खुशी का नाम है। अल्लाह ताला शादीशुदा जोड़ों को शाद और आबाद रखे, इतना ही काफ़ी है उर्दू का, वरना तो हम इसी पे चले जाएंगे। तो मोहसिना का लफ्ज़ असल में एक औरत जब एक मर्द के निकाह में आ जाती है तो बहुत ही महफूज हो जाती है, कोई गैर मर्द उसके बारे में सोच भी नहीं सकता और इसी तरह की बहुत सारी खूबसूरत किस्म की सिक्योरिटीज़ मिलती हैं। इस पारे के आगाज़ में ही हम ऐसी औरतों की बात करेंगे। पारे का मौजू औरत की आज़ादी का फितना है। हकीकत यह है कि आज 2020 के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना यह है कि आज की औरत आज़ाद होना चाहती है। अब वो किससे आज़ाद होना चाहती है? वो बंदगी से आज़ाद होना चाहती है, अल्लाह से ताल्लुक़ की सूरत में, वो लिबास और हिजाब की पाबंदियों को पीछे डालकर अपने जिस्म की नुमाइश पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात करके आज़ाद होना चाहती है। वो एक बेटी है और माँ बाप की लगाई हुई पाबंदियों को बोझ समझते हुए, और माँ बाप तो कर्फ्यू लगा देते हैं, अपने ही माँ बाप को छोड़कर सहेली और दोस्त के घर में जाकर रहने की आज़ादी मांगती है। और अगर ये औरत फिर कल किसी के निकाह में आती है तो बराबरी का शोशा देते हुए वो सारी पाबंदियां जो बीवी होने के नाते इस्लाम ने लगाई उससे आज़ाद होना चाहती है। और इसी तरह वो औरत जब कल माँ बनती है और फिर बच्चे की जिम्मेदारियों को पूरा करना, उसकी सफाई सुथराई और उसके पैम्पर से आज़ाद होना चाहती है, और मर्द को कहती है कि एक पैम्पर मैं बदलूंगी तो दूसरा तुम बदलोगे। और औरत की आज़ादी क्या अखलाक से आज़ादी तो नहीं है कि पहले आप जनाब और इज्जत से बुलाने वाली औरत आज तुम तुकार पे आ गई, तुम तू तुम्हारा, और औरत मर्द का नाम ऐसे ले के जैसे शायद कोई छोटे भाई कभी ना ले। आज की औरत किस चीज़ से आज़ाद होना चाहती है? एक तरफ इक्वेलिटी का नाम है कि हम बराबर हैं मर्दों के, चलिए मेज़ कुर्सी को बराबर कर लीजिए फिर देखिए काम चलता है। हकीकत यह है कि गैरों के असर में आने के बाद ये जुमले पिछली सदी में, ख़ास तौर पे ये 20 साल जो मेरे आपके 20s में गुजरे, इसमें ये फितना सर पकड़ गया। इस पूरे पारे में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि इस फितने का तोड़ भी क्या है और वजूहात भी क्या हैं। और ये पारा हकीकत में नाम भी अन्निसा है सूरत का। पारे का पहला लफ्ज़ वल मुहसनात एक फ़ीमेल यानी एक कह लीजिए कि मुअन्नस के सीगे पे है, और ख़ास तौर पे ये शुरू का जो रुब है इसमें घर और घर की इसलाह की बातें होंगी। कोशिश करूंगी अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि इस पूरे पारे को पढ़ाने के दौरान कम अज़ कम वो जुमले बोल दूँ जिससे औरत और मर्द इस घर को लेकर एक खूबसूरत नेमत समझते हुए चलें। सवाल पैदा होता है कि औरत की आज़ादी का फितना उठा कहाँ से, तो इसका जवाब हम लेंगे पारे का मरकजी ख्याल आयत नंबर 27 से। कौन लोग हैं जो इस पे पेम्पर करते हैं, कौन है इनके पीछे, किनका हाथ है ये सोच देने में और औरत को आज़ादी की ख्वाहिश मन करने में। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश्शहवात अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश्शहवात यंतमीलू मैलन अज़ीमा। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। कौन निकला अंदर से? इस फितने को फैलाने वाला फितना परदाज कौन सा गिरोह? अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश्शहवात। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए आयत शुरू होती है अल्लाह के इरादों से, और अल्लाह का इरादा है यतूब अलैकुम। यहाँ एक हल्की सी बात जो आपको कुरान पाक को मजीद गौर व फिक्र और तदब्बर के लिए सीखने पे माइल करेगी वो लफ्ज़ है यतूबा। आप कहते हैं, बल्कि मैंने कई दफ़ा दूसरों से सुना भी, कि हम तो तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला के नाम के साथ ये लफ्ज़ क्यों आता है? जैसा कि यहाँ है, तो ज़रा सा एक छोटा सा सुर ले लीजिए माजरत के साथ, मेहमानों और लिसनर्स के साथ जो अभी इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं हुए, लेकिन स्टूडेंट्स और एडमिन इसको इंजॉय करते हैं। देखिए लफ्ज़ तौबा, ताबा यतूब तौबन से रुजू करने को कहते हैं, पलट आने को। औबन था असल में किसी चीज़ का अपने असल पे आ जाना। जब यतूबा के बाद अला आ जाए, जैसा कि यहाँ आ रहा है अला अपॉन के मानों में, तो ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए आता है कि अल्लाह ताला पलट कर आए। और जब यतूबा अला आ जाए जैसा कि यहाँ है, तो मुराद होता है अपनी रहमत से पलट आए। जब बंदा तौबा करता है तो आप नोट कीजिएगा, अपने लिए एक होमवर्क रख लीजिए, इला आएगा, इला इल्लाह, ठीक है, इन्नी अतूबु इल्लाह मिसाल है। तो बंदे के नाम के साथ जब लफ्ज़ तौबा आता है तो इला के सिले के साथ आता है, उससे मुराद क्या होता है कि अल्लाह गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ के तेरी तरफ आ रही हूँ, गिल्ट और बोझ ने इतना जेरे बार कर दिया कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं अकेली ये बोझ सहार नहीं सकती, तू मुझे पकड़ ले। और जब अल्लाह के लिए आता है यतूब अलैकुम, तो बंदा आया इधर से, इमेजिनेशन में लाइए जरा, एक बंदा अपने गुनाहों के बोझ से लदा फदा अल्लाह ताला की तरफ भाग रहा है, चला भी नहीं जा रहा, गिर गिर पड़ रहा है, उधर से अल्लाह यतूब अलैकुम अपनी रहमत के साथ उस बंदे की तरफ आता है। ये वही बात है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा एक हाथ आता है तो अल्लाह ताला एक बालिश आता है, और बंदा चल के आता है तो अल्लाह दौड़ के आता है। जितनी ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को बंदे के पलट कर आने पे होती है, इतनी किसी माँ को नहीं हो सकती अपने रूठे हुए और गुमराह बच्चे को घर आते देखकर। सहरा में एक ऊंट खो जाए किसी का और जान के लाले पड़ जाए और अचानक वो ऊंट सामने आ जाए और वो खुशी में गलत जुमला बोल दे कि ऐ रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। खुशी का अंदाज है जज्बातियत, अब है तो जुमला शिर्क और कुफर का, लेकिन अल्लाह दिलों को जानता है कि उसने ये जुमला कैसे बोला। तो अल्लाह ताला को उससे ज्यादा खुशी होती है जितनी इस ऊंट वाले को अपना ऊंट देख कर हुई कि उसका बंदा पलट कर आ गया। जाते बहुत हैं, आते थोड़े हैं, ये भी जुमला याद रखिएगा। जब एक बंदा अपने गुनाहों के बोझ में लदा पदा होता है ना, तो फिर उसको शर्म आने लगती है। ये ऐसी है कि जैसे बच्चा गलत काम करे तो छुप जाता है। आपसे किसी दोस्त के बारे में कोई गलत काम हो गया हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप उसका सामना नहीं करते। बीवी शौहर घर बार हर जगह यही असूल है कि जिसकी कोई हक तलफी की होती है, जिसकी बात पे अमल नहीं किया होता, जिस नसीहत को ओवरलुक किया होता है, उन्होंने कुछ कहा आप कुछ और कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी होती है और खास तौर पर उस दिन बड़ी शर्म आती है जिस दिन उम्मीदों के सामना होगा। इसीलिए आप देखिए जब कभी मुलाकात होनी हो तो उससे पहले रूठे हुए और बिगड़े हुए लोग मैसेजेस करना शुरू हो जाते हैं ताकि हमें सबके सामने ना कुछ पूछिए। तो ये एक फितरी सी बात है, अल्लाह ताला को बंदा खुशी देता है तौबा करके। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा प्यारा मौजू है, कभी ना घबराइए। अब आप चार पारे सुन चुके और पहली दफ़ा दौरे कुरान सुनना नसीब हो रहा है तो मत अपनी परेशान अपनी आदतों पे अपने लाइफस्टाइल पे परेशान हो और हर बात पे ना तो खुद को कुफर के फतवे दें ना मुनाफिक के और ना जहन्नमी होने के। ये मौजू आपके लिए नहीं है कि आप अधूरी इताअत कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो इल्म ले चुके और दे भी रहे और फिर भी इताअत नहीं हो रही। आप तो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह जिसके कानों में पहली दफ़ा रब का पैगाम पड़ रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला जहाँ बंदे को रोके वहां रुक जाइए और उसके बाद एक यू टर्न लेते हुए पलट आइए। अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। ये कैसे हो सकता है कि बंदा आना चाहे रब की तरफ और वो आने ना दे? क्या मुझे आपसे कोई मेरे और आपसे कोई कहता है कि मुझे आपके घर आना है तो क्या मैं उसको नहीं आने दूंगी? कहते हैं कि एक बादशाह था, और ये मैं मिसाल आपको अपनी एक सीरीज हम लोगों की एक बुक के थ्रू हमने पढ़ा था सर उठा के जियो, तो उसका वाक़ा सिर्फ चंद जुमलों में आपके शरह सदर के लिए कि आप कहीं खुद को इतना जेरे बार न समझें कि हर चीज़ आपको अपने ऊपर लग रही है। हाय फिर मैं तो बचूंगी नहीं, मैं तो फिर जहन्नुम के ऊपर से गुजरूंगी और ये शॉर्टकट तो जहन्नुम का, ऐसा नहीं है। देखिए एक बादशाह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा बहुत फरमाबरदार था, छोटा जरा तेज था। एक दिन बाप से कहने लगा कि मेरे हिस्से का सारा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं अभी लेना चाह रहा हूँ। बादशाह ने उसको सब चीजें जो उसके नसीब की थी दे दी, वो ली और वो चला गया। फिर कुछ अरसा वो गायब रहा। जहरा के बादशाह रोता था बाप बेटे की जुदाई में। एक दिन उसी बेटे का खत मिला कि अब्बा अगर मैं वापिस आऊं तो मुझे कबूल कर लोगे? बाप को क्या चाहिए? कहा हाँ आ जाओ, सारे मुल्क में शादियां ने बज रहे हैं और वेलकमिंग चीजें हैं कि शहजादा पलट के आ रहा है। और जब वो आया और जो कुछ हुआ ये सब देखकर बाप की खुशी और मोहब्बत, बड़ा बेटा बोलने लगा अब्बा मैंने तो आज तक लम्हा भर के लिए कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको उसके आने की खुशी मेरे आपके पास रहने से भी ज्यादा है। तो वो जुमला नोट कीजिए जो असल में तौबा की असल रूह है। बाप ने कहा कि बेटा जाते बहुत सारे हैं, पलट कर वापिस बहुत थोड़े आते हैं। ये है वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। याद रखिए गुनाहों की गंदगी इतनी स्टिकी होती है, ग्लूइश, चिपकने वाली, कि एक दफा बंदा किसी गुनाह को हाथ लगा ले वो छोड़ता नहीं है। वो इतनी कशिश है उसमें, क्या ग्रेविटी में कशिश होगी, क्या 9.8 की कशिश है और ग्रेविटी है जो आज इंसान जमीन की तरफ खींचता है। तो जरूरत है इस बात की कि अल्लाह की तरफ पलटी है। और ये जितनी बातें मैंने की हैं तौबा की, ये खैर उस बहन के लिए है कि जो वाकई औरत की आज़ादी के फितने का शिकार थी, सोच में या अमल में या ख्यालात में थी, कभी बोल सकी कभी ना। तो यहाँ वो बहनें तौबा कर लें, वो सारी बहनें अल्लाह के आगे सर झुका दें। अल्लाह नहीं तेरी मर्जी, जिस्म भी तेरा, मर्जी भी तेरी, नेमते भी तेरी, सवाल भी तू करेगा, अल्लाह ताला फौरन कबूल करेगा। सारी दुनिया आपके पोस्टर लगा दे, आपके बैनर नशर कर दे, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। तो जरूरत है इस बात की कि हमेशा लोगों को एक कॉर्नर दीजिए, पलटने का रास्ता दीजिए। और मेरे आपके लिए भी तो आज पांचवा पारा एक सीढ़ी है ना, कि क्या हम भी इसमें जो कुछ सुनेंगे, जब हमें समझ आ गई कि घर के बिगाड़ में मेरी ये वजह थी, ये तलाक क्यों हुई, ये झगड़ा क्यों हुआ, सुबह मियाँ गुस्से में क्यों चले गए, और शौहर भी करें। देखिए ये सिर्फ औरत की बात नहीं है, मर्द की भी है। मर्द को भी तो एहसास होता है मैं क्यों गुस्से में आ गया। इतना तो चीखने का हक मुझे नहीं था जितना मैंने लिया, फौरन आके सॉरी कीजिए। तो आखिरी जुमला इस पे, फिर आगे चलते हैं, और वो कह के सॉरी कहना सीखिए अल्लाह को भी और बंदों को भी, अगर आप किसी भी फितने का शिकार हो चुके। चलिए अब आखिरी बात जो इस आयत के अंदर है, यत्तबिउन शहवात, ये हैं वो लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और ये भी फितना हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त फोकस कीजिए कि जब हम अल्लाह से रहनुमाई लेने की बजाय दूसरों से लेने लगते हैं तो फिर ऐसे फितने हमारे अंदर आते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करें, हाथ दुआओं के लिए खड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई खूबसूरत दुआ आज से आपकी मेरी दुआओं का हिस्सा बन सकती है। अबू दाऊद की रिवायत है, सुनन अबी दाऊद 1551, यानी 1551। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्री समई व मिन शर्री बसरी व मिन शर्री लिसानी व मिन शर्री कल्बी व मिन शर्री मनीशी। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने कान की बुराई से, नज़र की बुराई, जुबान की बुराई, दिल की बुराई और अपनी मनी की बुराई से, यानी वो मादा जिससे बच्चा पैदा होता है। क्या पता चला कि जब इंसान ये जुमले बोल देता है ना कि अल्लाह मेरी मर्जी चाहिए, मैं तो अपनी पसंद से रहूंगी और औरत हूं मैं, क्यों मजबूर हूं, मैं तो अपनी करूंगी, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आज बच्चियों में ये शौक पैदा हो गया टू बी इंडिपेंडेंट। माँ बाप से फीस के पैसे नहीं लेती, क्यों, कि हम नहीं अपने माँ बाप का एहसान लेते। कल शादी हुई, शौहर को पहले दिन कह दिया डोंट वरी आई एम एट माई ओन, आई हैव माई क्रेडिट कार्ड्स। याद रखिए, आप क्यों आजाद होना चाहते हैं, आप क्यों नहीं किसी के ऊपर डिपेंड करते ताकि आपके कंधे हल्के रहें, फिर आपको बोझ नहीं डालना पड़ेगा। तो अगर कानों से ऐसी कोई बात सुन ली जिसमें ऐसे फितने थे, नजर पड़ गई किसी ऐसी चीज पे, मेरी अपनी जुबान से कोई ऐसा फितना निकला कि मैं आजाद हूं, दिल में कोई ऐसी ख्याल और बुराई आ गई, और अल्लाह ना करे हदे पामाल करके इंसान कोई इसकी और भी कैफियत पे चला गया, तो आज कहिए अल्लाह मुझे मेरे जुबान और इन सारे अज़ा के शर से बचा दे। इसी पे हदीस भी ले लीजिए दुआ के बाद इस मौजू पे, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 1550। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ के बारे में जो आप मांगते थे पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि आप कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्री मा अमिलतु व मिन शर्री मा लम आमल। ए अल्लाह, मैं हर उस काम के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसे मैंने किया है, और हर उस काम के शर से भी जिसे मैंने नहीं किया है। तो हम भी इस हदीस को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने जो काम किए तेरी नाफरमानी के, और जो नहीं भी किए उस पे हमें मुआफ़ फरमा दे। 3 सेकंड आपको भी देती हूँ, खुद भी मांग लेती हूँ, तो फिर चलेंगे पारे की झलकियों पे, हाइलाइट्स ऑफ दी पारा। 5वां पारा क्या है, कह लीजिए कि घरों को बचाने वाला भी पारा है और अतीउल्लाह और अतीउर रसूल के सबक से भरा हुआ पारा है। क्योंकि रिसेंटली आयत बाय आयत में मैंने ये पारा पढ़ाया है, एक एक आयत के ऊपर कम अज कम 10-10 बातें दिमाग में आती हैं जब आयत सामने आती है, लेकिन जाहिर है कि आपको वो नहीं दे सकेंगे। आप में से कोई जो बात आज कही जाएगी इशारतन, या आपको लगा कि इस मौजू पे तो ज्यादा ही बात होनी चाहिए, तो आप आयत बाय आयत तफसीर खोल लीजिए। फिलहाल वो इस्लाम 360 के चैनल पे मौजूद है, हमारे फेसबुक हमारे पेजेस पे, इंशाल्लाह मुझे पता नहीं इसलिए मैं बोल नहीं पा रही, लेकिन बात के लिए काम लिख लीजिए। और बहुत सारी तफसीरें, 8-10 तफसीरें तो सिर्फ nurulquran.com पे आपको मिल जाती हैं। और इसी तरह तकरीबन पिछले 2 साल का 60-70% इल्म का सफ़र जो हमने तय किया वो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक का मुझे ज़्यादा पता नहीं। इस वक्त हम वक्त की मुनासबत के साथ इस पारे की झलकियाँ लेते हैं, यानी मैं ये पारा क्यों सुनूं? नंबर एक, ताकि पाक दामनी की जिंदगी गुजारना सीख सकूं। और आपने ये सारे पॉइंट्स अब नोट करके जो ही पारे का तर्जमा शुरू होगा तो आपने फिर आयतों के नंबर खुद ढूंढ के लिखने हैं इंशाल्लाह। दूसरी बात है सालेहीन के तरीकों की पैरवी करना। या एक छोटी सी बात कह दूं कि बाज दफा हम कहते हैं जल्दी से एक स्नैपशॉट ले लूं, गलत तरीका है। इस वक्त आप जो लिख सकते हैं वो लिखें। ये सारी चीजें जो आपको वीडियोस के अंदर स्टडी मटेरियल में दिखती हैं, ये बाद के लिए हैं। कमियों को दूर कीजिए, ये मेकअप करने का काम है। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते कि वो कापियों के सफ़े फाड़ते रहें, खुद लिखिए। हाँ, जो हमारे दूसरे साथी हैं वो सिर्फ देख ही रहे हैं, ये उनके लिए भी है। यानी स्टडी मटीरियल जो इस वक्त शो किया जाता है वो स्टूडेंट्स और एडमिन के लिए नहीं है। किन के लिए है? हमारे गेस्ट के लिए, लिसनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए होता है, ताकि वो फोकस कर सकें। वो भी अगर इसको थोड़ा थोड़ा अपने साथ लिखना लगे तो इंशाल्लाह कल अल्लाह उनको भी इल्म के तालिब बना देगा। दूसरी बात है ये स्टूडेंट्स की कमियों को पूरा करने के लिए कि आपने एक बार सुन लिया, आप दोबारा सुनते जाइए और इसके अंदर से आप नोट करते जाइए। जहां आप रोकेंगे आपकी टीचर रिकॉर्डिंग में रुक जाएगी, यहां नहीं रुक सकती। तो बहरहाल तीसरी चीज, चलिए इस सूरत को और इस पारे को पढ़ने की वजह कि अल्लाह से इसका फजल मांगना सीखें, जरूरत है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला से डरते हुए अपने खानदान और माशर्ती ताल्लुकात की इसलाह करना सीखें। शहादते हक का काम उम्र भर करते रहना है, इसकी नीयत को पुख्ता कर सके। और अल्लाह ताला की किताब को दिल से मानना सीखेंगे, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिम्मेदारान की इताअत करना सीखें, यानी उलिल अम्र खास तौर पे। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम, लेकिन ये तीन इताअतें अगर आज हम मुसलमानों की जिंदगी में आ जाएं तो दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी, वर्ल्ड लीडर बनने का ये नुस्खा है। अल्लाह ताला हमें इन तीनों पे अमल की तौफीक दे। फिर अगली चीज जो हम इस बारे में सीखेंगे वो क्या है कि हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह का इल्म काफी है। आखिरत के लिए दुनिया को फरोख्त करना क्या बुरा व्यापार है, इसको सीखेंगे। अल्लाह ताला की रहनुमाई पे चलना, मुनाफिकीन को अपना दोस्त और मददगार ना बनाना और सुलह का मिजाज रखना, ये सीखेंगे इंशा अल्लाह ताला। फिर इस पारे को पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों के लिए नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी नमाजों को अव्वल वक्त की नमाजें बना दें, सिर्फ रमजान में नहीं गैर रमजान में भी, और खास तौर पे ईद के दिन भी। बोलिए आमीन आमीन। अल्लाह की रजा के लिए काम करना सीखें, पोशीदा सदका और खैरात की तलकीन करने का क्या फायदा ये देख सकें, और सबसे बढ़ के इंसाफ का अलम बरदार बनना और अल्लाह का गवाह बनना सीखें। और अलम बरदार कहते हैं झंडा पकड़ने वाले। अल्लाह ताला मुझ समेत आप सब सुनने वालों को इंसाफ के अलम बरदार बना दे और अल्लाह के दीन के गवाह बना दे। चलिए अब चलते हैं आयतों पे। सूरत निसा की आयत नंबर 24 से ये पारा शुरू होता है और एंड तक सूरत निसा ही चलेगी इसमें, और हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए क्या क्या रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वल्मुहसनातु मिनन्निसा इल्ला मा मलकत ईमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं, अल्लाह ताला ने अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गईं कि अपने माल के मेहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, न कि शहवत रानी के लिए। इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ इन्हें इनका मुकरर किया हुआ मेहर दे दो, और मेहर मुकरर होने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतें यानी मुहसनात से निकाह कर सके, इसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, लिहाजा इनके सरपरस्तों की इजाजत से इनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से इनके मेहर अदा कर दो, ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज यानी मुहसिनात होकर रहें, आजाद शहवत रानी और ना चोरी छुपे आशनाइयां करें यानी हिडन फ्रेंडशिप। तभी तो लोग आज कहते हैं हम तो ओपन कर रहे हैं, हम तो छुपी भी दोस्तियां नहीं करते लड़कों से। अल्लाह ताला हिदायत दे ये जुमले बोलने वालों को और सुनने वालों को। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाएं और इसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हो, तो इन पर इस सजा की बनिस्बत आधी सजा है जो खानदानी औरतों यानी मुहसिनात के लिए मुकर्रर है। कनीजों से निकाह का ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। जी ये वो हिस्सा है जिसमें तीन मौजू हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज एक लफ्ज़ वल मुहसना, हमने इसको देखा पिछली आयत जो पारे कैंट पे थी उसके तनाजर में, यानी मुहर्रमात की जो लिस्ट हमें आयत नंबर 23 सूरत निसा में चौथे पारे के आखिरी सूरत में मिली थी, उसमें एक इजाफा है और वो है किसी मर्द के निकाह में मौजूद कोई औरत उससे भी निकाह हराम है। बड़े गौर से सुनिएगा कहीं गलती ना खा जाए। आप देखिए कि इस्लाम शादीशुदा औरत के बारे में कितना संजीदा है और उसको कितना सिक्योर करता है, और यही लफ्ज़ हिस्सन में छुपा हुआ है, क्योंकि औरत को एक ही शादी की इजाज़त है एक वक्त में, जब एक औरत किसी के निकाह में आ गई, अब वो औरत किसी दुनिया के मर्द के निकाह में नहीं आ सकती जब तक के दो में से एक काम ना हो, या वो मुतल्लिका कहलाए और या फिर वो बेवा बने। अब बात कीजिए, यहाँ आज के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना है, खुल के उसका नाम भी नहीं लेने को दिल करता, और वो क्या है कि पिछले दौर में गैर शादीशुदा लड़के लड़कियों के कल ताल्लुकात थे, बदनाम था लफ्ज दोस्ती और यारी का, बॉय गर्ल फ्रेंडशिप, लिविंग टुगेदर। लेकिन आज के इन फितनों के दौर में शादीशुदा लोगों के ज़्यादा अफेयर्स हैं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान के किसी एक शहर का नाम ले दूं और मैं आपको फिगर्स बताऊं तो आप कांप के रह जाएंगे कि ये फितना अब हमारे मुस्लिम मुल्कों में भी किस तेज़ी से पहुंच चुका है। कहां हम कहें अच्छा ये बाहर रहने वालों की बातें होंगी, ये जुमला नाम लेकर इसलिए बोला। तो लिहाजा ऐसे ब्रदर्स और ऐसी सिस्टर्स जो किसी की बीवी की तरफ निगाह डालें या उसको अटेम्प्ट करें और उसको अपना शौहर अच्छा ना लगे, उनको तौबा की ज़रूरत है। क्या आप चाहते हैं कि एक औरत का शौहर फौत हो और वो बेवा बने, फिर 4 माह 10 दिन वो इतनी तकलीफ के दिन गुजारे, और अगर आप उसको बेवगी के दिनों में अगर देख ले अचानक तो आप तो खुद ही इरादा छोड़ दें कि वो असल में ऐसी थी। सिर्फ शैतान है जो ये टेम्पटेशंस देता है। अपनी बीवी जैसी भी हो उससे ज्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, और अपने बच्चे कैसे भी हों, मर्द को कहते हैं कि दूसरे सब बच्चों से अच्छे लगते हैं। तो लिहाजा यही पैगाम मर्दों के लिए, यही औरतों के लिए, आपकी कहीं मर्जी थी नहीं हो सकी, अब उसके बाप ने उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, कत्ल कर दीजिए अपनी ख्वाहिश को, हिजरत कर लीजिए उसको देखने से, काटने से, पिटने से। और इसका बेहतरीन तरीका यह कि अपने आप को मसरूफ कर लें। किसी ने बहुत ही खूबसूरत जुमला बोला था इमाम बुखारी के बारे में, कहते हैं कि जिस उम्र में लड़के लड़कियों को ताकते झांकते हैं ना, उस उम्र में इमाम बुखारी किताबों को ताकते थे, उसको झांकते थे। अपने जवान होते हुए बच्चों को किताबों के समंदर में डुबो दीजिए, यकीन कीजिए इधर उधर के ख्यालात भी नहीं आएंगे। अगली बात जो इसमें है वो निकाह की है। आपको पता भी नहीं चला, बड़े मजे की बात है, सिर्फ तर्जमा अगर जिन्होंने पहली दफा सुना है तो आपको पता है कि जितना तर्जमा अभी तक आपके सामने रखा गया उसमें अब निकाह के अरकान और शरायत पड़ चुके हैं। यानी पहले क्या था, फलां फलां से निकाह ना करो, और उस निकाह की लिस्ट में आखिरी औरत वो थी जो शादीशुदा है, जो किसी और के निकाह में है, और उसके बाद अब इल्ला के बाद किताब अल्लाह कह लीजिए उसके बाद, या फिर ओहिल्ला लकुम मा वराकुम जालिकुम के बाद निकाह के कुछ अरकान और शरायत है, नोट कीजिएगा। तो पहली चीज है तलब और रजामंदी। तलब किसकी तरफ से होगी? लड़के की तरफ से। रजामंदी किसकी होगी? लड़की और लड़की के वली की। दूसरी चीज है हक महर। फौरन दे दीजिए या बाद में दे दीजिए, दोनों जायज हैं, लेकिन इतना हक महर नहीं रखना कि कोई दे ही ना सके। किसी खातून के बारे में मैंने सुना कि उसने कहा हमारे तो खानदान में हक महर इतना रखते हैं कि मर्द सारी जिंदगी ना दे सके ताकि तलाक ना हो। बात समझ गए? ज्यादा हक महर रखो ताकि मर्द तलाक देते हुए डरे। दो जुर्म किए इस कानून ने अगर किसी का है, पहली बात है कि ऐसा मर्द तो कभी बीवी का हक महर दे ही नहीं पाएगा, और दूसरी बात है मारे बांधे उस औरत को रखेगा चाहे वो गले की फांस बन जाए। तो ये जुल्म है। हमने ये पढ़ा कि हर बंदा अपने मामले के साथ और अपनी कमाई के साथ हक महर देगा। तीसरी चीज ये कि मुद्दत मुकर्रर ना की जाए, यानी टाइम मैरिज, निकाह मुता और पेपर मैरिज जो किसी शर्त के साथ हो वो निकाह में नहीं आती। चौथी चीज वली की रजामंदी और इजाजत। और लिख लीजिए कि करीब के वली के होते हुए दूर का वली नहीं चलेगा। यानी लड़की को इस बात की इजाजत नहीं कि बाप नहीं मान रहा तो वो किसी मामू को वली बनाकर जाकर अपनी पसंद की जगह पे शादी कर ले। ला निकाहन इल्ला बी वलीजन। बुखारी की रिवायत का खुलासा है कि निकाह होता ही नहीं वली की इजाजत के बगैर। तो जरूरत है इस बात की कि इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए। ऐसी शादियों की कोई शरई हैसियत नहीं चाहे आप जाकर उसको कोर्ट मैरिज का नाम दे दें। पांचवी चीज है गवाह। ये 5 पिलर्स हैं कह लीजिए, इनमें से कोई एक भी गिरा दीजिए तो निकाह नहीं होता। फिर इसके बाद देखिए कि निकाह सुन्नत और फितनों के खिलाफ बचाव का एक रास्ता है। सुनन तिर्मिजी की खूबसूरत रिवायत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से हम तक पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ऐसा शख्स तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजे जिससे तुम मुतमईन हो तो इससे बेटी का निकाह कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर फितना और ज़बरदस्त फसाद बरपा होगा। तो लिखिए दौरे हाजर के फितनों में से सब टॉपिक बालिग बच्चों के निकाह ना करना। आज ये फितना घर घर पड़ा हुआ है। इस्लाम का पैगाम क्या था कि जब एक बच्चा अपने अंदर ज़रूरत महसूस करता है, उसके अंदर बलूगत की अलामतें आ जाती हैं, लड़की भी प्यूबर्टी में आ जाती है, तो बस उसके लिए रास्ते बना दिए जाएं। देखिए ये जो कहते हैं ना अर्ली मैरिजेस, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको इस्लाम क्या दिखाता है, लेकिन आपका मेरा हाल क्या, अल्लाह की बना। आज की जवान नस्ल के लिए ये चंद जुमले बोलने दीजिए कि आज माँ बाप अपने बच्चों की शादियों के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं। शादी कुछ तो कानून ने रोक दी कि 18 साल से पहले नहीं करनी, और कुछ कस्बे मुआश के खौफ ने छोड़ दी कि अभी बच्चा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, यानी मेडिकल नहीं पूरा किया, और अभी तो इसकी जॉब ही नहीं लगी। हालांकि वो गरीब अल्लाह का बंदा साल 1.5 साल का अपने पाँव पे खड़ा हो गया था, माँ बाप को नहीं दिखता। तीसरी बहुत बड़ी वजह शादियों को डिले करने की, माँ बाप का गैर हकीकी और अन अचीवेबल टारगेट। माँ को बहू ऐसी चाहिए कि अंधेरे में बिठाओ तो वो रोशनी हो जाए, यानी बिजली का बिल कम आए। पतली इतनी चाहिए कि कमर नाप लो, और काम घर का ऐसे करे जैसे खूब मजबूत जिस्म जुस्से वाली मेट करे। उम्र में चाहिए उसको 16-17, और उससे बस एक आधा ही ऊपर हो तो ठीक है, लेकिन तजुर्बा लेकर आए वो 50-60 साल की माँ का और सास का, ये नहीं होगा। न्यूयॉर्क में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जब बहुत अरसा पहले, के बच्चों की शादियों में क्या रुकावटें, तो उन्होंने 8-10 लिखी थी जो आज भी सच है। मतलब बच्चे एजुकेशन के लिए नहीं करते, कल्चर बन गया आज वेस्ट में खास तौर पे कि अभी शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, और बुरी दोस्तियां भी इसकी वजह है। होमोसेक्सुअलिटी इसकी बहुत बड़ी वजह है जो अभी फिलहाल लोगों को नजर नहीं आ रही, और इसी तरह उसमें एक वजह ये थी कि माँ बाप नहीं मानते। पहले तो बच्चों को हर वो माहौल और फितना दिखाएंगे जिससे दिल में जज्बात और ख्याल आते हैं, नुकसान क्या होता है उसके बाद, शादी के वक्त पे पीछे होते हैं। तो जब अच्छा रिश्ता आ जाए तो कर दीजिए। मन तर दो न दी न हो व खुल कहू के लफ्ज़ भी आते हैं, बहुत कुछ पूछना। हमने आज शादी को महंगा भी कर दिया और मुश्किल भी कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत जिसका हसूल आसान हो वो मर्द के लिए बड़ी बाबरकत होती है। आज हमारी शादियां अल्लाह की बना चू चू का मुरब्बा बन चुकी। शादी के लिए लड़के लड़की की तलाश में हम रिसर्च करने लग गए, रिसर्च कमेटियां बनाएं बिठाएं, कैसी हो कैसा हो, वो कैसी, कद नापते हैं, वजन तोलते हैं, शक्ल देखते हैं, रंग गोरा है, चिट्टी है, बॉर्बी डॉल चाहिए। और जब शादी की रस्में शुरू होती है तो हिंदुआना कल्चर, और जब निकाह होता है तो छुहारे बटते हैं सुन्नत के लिए। ये है आज हमारी शादियाँ। कहते ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। इस्लाम की शादी का तरीका देख लीजिए और आज हमारी शादियों के तरीके देख लीजिए, लगता ही नहीं कि ये एक ही इंसान के लिए पीछे से गाइडलाइन आई है। आज बेटी की शादी इतनी बोझ बन गई कि एक बहुत बड़ी वजह जहेज का ना होना। आज तक किसी मासी ने आपसे कहा कि बाजी मेरी मदद करें मेरे बेटे की शादी है? क्या कहती हैं गरीब, मेरी बेटी की शादी है। हालांकि इस्लाम में शादी का सारा खर्च मर्द उठाता है। तभी तो कहा कि फिर यहाँ जो बात हुई लॉन्डी की, चलो किसी की कनीज से कर लो, उसकी ज्यादा डिमांड्स नहीं होंगी, ख्वाहिशात नहीं होंगी। तो याद रखिए कि शादी को आसान करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा फितना है आज, जिसकी वजह से फिर आप देखिए क्या हो रहा है, जब शादी नहीं होगी तो जिनाम होगा, भूख लग गई और खाना नहीं दे रहे तो फिर तो चोर भी आएगा और किसी का खाना चोरी करेगा। साथ ही सी बात है, अल्लाह की सुन्नत समझाने लगी हूँ, जो जरूरत होती है ना अल्लाह उसके मुताबिक हालात बनाते हैं। बच्चा दुनिया में आता है सिर्फ दूध चाहिए, दांत ही नहीं दिए, और जो ही दांत आने लगे तो कहा अब माँ को छोड़ो और छोटी छोटी पतली पतली खुराक देने लग जाओ। इसी तरह प्यूबर्टी के साथ जज्बात आते हैं, जिस समय तब्दीलियां आती हैं, इट्स नेचुरल फैक्ट। तो अब अगर आप उस जरूरत को सही तरह पूरा ना करें तो आज फिर वेस्ट तो आपके बच्चों को सिखाएगा। स्कूलों में सिखाते हैं कि तुम अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नियत कीजिए बच्चों की छोटी उम्र में शादी की। आप कहते कैसे, अभी तो इनको नाक नहीं पोछना आता, ये अब 14 साल का लड़का बन के शादी करेगा, तो फिर तरबियत का अंदाज बदलिए। 18 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम सिंध की फातह बनते हैं। हमारे कल्चर के होते तो भी उनका पासपोर्ट और उनका शनाख्ती कार्ड भी ना बना होता, अभी तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस ना मिलता। तो जरूरत है पेरेंटिंग स्टाइल को। अक्लमंद माएँ और बाप अपने बच्चों को वक्त से पहले जिम्मेदार बनाते हैं। बच्चों को भेजिए ग्रोसरी लेने, इस दफा यही करके देख लीजिए। बेटी को कहें जरा बजट बनाए और घर में एक दिन का किचन संभाले, खेल खेल में इंशाल्लाह ये सीख जाएंगे। और एक और छोटी सी बात यह है कि जब हम मुहर्रमात की लिस्ट देखते हैं तो उसमें मंगेतर का नाम नहीं दिखा मुझे, ना 23 में दिखा ना 24 में, लेकिन आज हमारे कल्चर में मंगेतर भी एक महरम की किस्म बन गया कि मंगनी कर दी और बस फिर इसके बाद इसके और उस लड़की के बीच में हर रابطہ जायज़ है, ज़रूरत नहीं है। और जब शादी की रस्में आती हैं, अल्लाह की बना एक जुमला जो मुझे कह लीजिए कैसे लगता है कि सारे मौजू को समेट देता है, कि आज हमारे यहाँ शादियाँ होती नहीं, पिक्चराइज की जाती हैं। यानी एक वीडियो फिल्म मूवी देखने में और हमारी शादी में क्या फ़र्क रह गया है? गाने पे गाना तो सेट करना होता है, फूलों को सारे शहर से इकट्ठा करना है ताकि वो गाना सेट करे, तो आज पिक्चराइजेशन हो गई। हमारी रस्में लॉजिकली कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हम खुद नहीं मानते कई चीज़ों को। सवा मन मिठाई को कौन मानता, लड्डू पेड़े बांटना कौन खाता है, लेकिन करेंगे क्योंकि रस्म है, नहीं छोड़ते। जहेज किसको अच्छा लगता है, हर साहिब अकल कहता है जहेज नहीं होना चाहिए, ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माशरे में इन है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इस्लाम की अहमियत का एहसास दिलाए और अमल करने की तौफीक दे। देखते हैं कि इस्लाम में निकाह की क्या अहमियत है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी आप उसको करें भी क्यों, बात तो सच है ना। तो पहली बात है कि इस्लामी तरीक़ा निकाह में तमाम मसाइल और मसाइब का हल है, क्योंकि जब आपके मसाइल हों और आपको उसका हल ना आता हो तो मसला और बिगड़ जाता है, ये भी याद रखिए। दूसरी बात है कि निकाह से फरार बुराई और बेहयाई का फितना है। आज बहुत ज़्यादा जिनाम क्यों हुआ, आज फहाशी क्यों हो गई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह निकाह से फरार है। फिर इसी तरह निकाह अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। निकाह में ताखीर यानी देर करना एक फितना है। कामयाब होने के बाद निकाह करेंगे, किस कामयाबियों की बात करते हैं? डिग्रियों कि डिग्रियां तो मिल गईं, बैज ऑफ ऑनर तो मिल गए, लेकिन अगर इज्जतें पामाल हो गई तो क्या होगा? इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 26, ये है असल में वो सारी बात को समेटने वाली आयत। युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला चाहता है, लियुबय्यिना लकुम, कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान करे, और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह के इरादों के साथ अपने इरादे मिलाइए। अल्लाह का तो इरादा यह है कि लियुबय्यिना लकुम, कभी आप देखिए कि किसी इल्हामी किताब के साथ कोई तस्वुर भी कर सकता है वो मसाइल जो हम दूसरे पारे के आखिरी रुब में पढ़कर आए, जिसमें निकाह भी है, जिसमें तलाक भी है, जिसमें यह हैज की भी बातें हैं। ये है इधर बात कि अल्लाह ने इस कुरान को किताब हिदायत बनाया, ये वर्सेस टू रीड नहीं, ये वर्सेस टू इम्प्लीमेंट है। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ये बातें बताता है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमें ये बातें समझ आएंगी। जब ये किताब आम न रही, जब हमने इसके तर्जमे को छुपाया, तो फिर क्या हुआ? जो आपकी इस बारे की आयते तदब्बुर, जिसका थोड़ा सा जिक्र ऊपर हो गया, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, हाँ अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के शर से और इन फितनों से बचा ले। तो इस आयत का टॉपिक क्या है? शरीयत बामुकाबला शहवत। शायद आप में से किसी के लिए नया जुमला हो, थोड़ा सा इसके लिए आपकी मदद करती हूँ। देखिए, किसी भी सोसाइटी में दो स्ट्रीम लाइन चल रही होती हैं, दो रास्ते साथ साथ होते हैं। एक है शरीयत का रास्ता, जिसकी बुनियाद वही इलाही है। आज हम मुसलमानों के लिए कह दें तो कुरान और सुन्नत, उस पे अमल, उसके तकाजे, उसकी लगाई हुई पाबंदियां, लेकिन उसी के साथ साथ एक नकली कॉपीट जाली किस्म की शरीयत भी बनाते हैं वो लोग, अल्लज़ीना यत्तबिउन शहवात, जो कि ख्वाहिश परस्त है, और वो क्या करते हैं शहवत के साथ, चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की। सच्चा मोमिन शरीयत का पाबंद है, शरा का पाबंद है, कि ठीक है मुश्किल तो है लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी से मानना है। ये भी इस बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कि अल्लाह की शरीयत को खुशी से मानो, बोझ ना समझो, परेशानी ना करो। लेकिन इसके बरक्स जो इजी गोइंग लोग होते हैं, जो कहते हैं छोड़ो हमसे पाबंदियां बर्दाश्त नहीं होती, ये हैं शहवत वाले लोग, ऐसे लोगों की बातें की तो आप देखिए कि औरत की आज़ादी के फितने में मुबतला लोग अपनी जिंदगी शहवत के मुताबिक चाहकर अपनी जिंदगी की असल खुशी खो देते हैं। देखिए, किसी का बन जाने में मजा है या किसी को बना लीजिए अपना, अल्लाह का बन जाने में जो सुकून और खुशी है, इससे बड़ी खुशी जिंदगी में किसी ने आज तक ना पाई होगी। तो लिहाजा दो मुख्तलिफ किरदार आपको सोसाइटी में दिखेंगे, एक है मोमिन औरतें और मर्द भी, शरीयत वाले रास्ते पे चलने वाले, और दूसरे हैं जाहिलियत और शहवत की राह पर चलने वाले लोग, कौन, जो औरत की आज़ादी के फितने में मुबतला हैं। सामने औरतें आती हैं, पीछे से थिंक टैंक मर्दों के होते हैं, क्योंकि औरत जब खुली होके बाहर आएगी तो लज्जत किसको मिलेगी। देखिए, बेपर्दगी असल में होती औरत से है, करवाते मर्द हैं। उनकी निगाहों को चस्का चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन का काम एक औरत करती है, पीछे गैंग मर्दों के होते हैं। औरत तो मजबूर है, वल्ला ही आज की औरत मजबूर है। आपको क्या पता कौन किसके हाथों में बिका हुआ है। तो फिर करना क्या है, शहवत परस्तों से बचना है। उनके कुछ मकरो फरेब नोट कीजिएगा, यानी शहवत को कह लीजिए लस्ट, तो फिर हमें अपना अपना लगेगा, क्योंकि हम उर्दू भी नहीं अब अच्छी बोलते, तो फिर इंग्लिश के लफ्ज़ तो बहुत ही आसान हो जाते हैं हमारे लिए समझने। तो जो लोग लस्ट के पीछे होते हैं ना, वो कुछ डॉजिस दे जाते हैं। क्या रोशन ख्याली के नाम पे शहवत परस्ती के लोगों को आदि करेंगे? कहते हैं वी आर सो ओपन माइंडेड, हम नैरो माइंडेड नहीं है, रोशन ख्याल है, मॉडर्न है। इसी तरह औरतों की इज्जत के नाम पर इनकी तजलील करते हैं। आप खुद बताइए, एक औरत होने के नाते आप क्या चाहती हैं? सब आपको देखें, सब आपकी बातें करें, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे आपकी तस्वीरें लगें। वल्ला ही, अकल जब अकले सलीम होती है और कल्ब जब कल्बे सलीम होता है, औरत कभी ये नहीं चाहती। चंद पैसों के लिए एक औरत बिक जाती है, ये पीछे शहवत परस्त लोग हैं। इसी तरह औरतों की आज़ादी के नाम पे गुलामी है। ये तो आप आज़ादी मांग के खुद गुलाम हो रहे हैं। वो काम जो अल्लाह ने कवामियत के तौर पे पहले बाप से और फिर शौहर से करवाने थे, आपने अपने कंधों पे रख लिए। आप तो नफ्स के गुलाम बने, मुआशरे के गुलाम बने। इसी तरह औरतों के मुसावी यानी बराबरी के हकूक के नाम पर इस्लामी शरीयत का इनकार करने वाले होते हैं। पहले भी तो सब कुछ था, ये अब क्यों हो गया? इसलिए कि आज कुछ लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ लिए, इसलिए कि अब ज़्यादा ही गैरों से मुतासिर होने लगे, और इसी तरह हिफाजत और इल्म के नाम पर नामुनासिब उम्र में जिनसी तालीम दे देना। मुझे तो खौफ है कि अब ये हमारे अपने मुल्कों में भी ना शुरू हो जाए। और मुझे पिछले ट्रिप में कुछ साथियों ने चीज़ें बताई तो मेरी आंखें भी खुली थी और मेरा मुंह भी खुला था। मुझे ऐसे लगे कि शायद मैं अभी अपने मुल्क में नहीं हूँ, कहीं और हूँ। बाहर तो हम सुनते ही आए, आज वक्त से पहले बच्चों को जब जिनसी तालीम सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती है, ये बहुत बड़ी वजह है शहवत परस्ती को फैलाने में। आप देखिए कि जिस बच्चे को छुरी चलानी नहीं आती, आप उसके हाथ में छुरी देते? आप में से कोई 4 साल के बच्चे के हाथ में छुरी देता? तो आप एक डे केयर में और बारने हागे में उस बच्चे को वो बातें बताते हैं कि यहाँ इस मुकद्दस महफिल में नाम ना लूं, जो मेरे गुनाहगार कानों ने सुना और अपने ही साथियों ने अपने ही बच्चे का तजुर्बा बताया कि जिसको उन्होंने छोटी उम्र में 4-5 साल में जब छोटे स्कूल में दाखिल किया तो वहां बच्चा क्या सीख कर आया और क्या वहां मैसेजेस थे। जो खुद बच्चा है आप उसको बच्चा पैदा करना सिखा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो इस प्लान को समझिए और इसका इलाज इस इल्म को आम करके लोगों को अल्लाह की बात से जोड़ना है। यानी औरतों की आज़ादी के फितने के असरात क्या पड़ते हैं? पहली बात है, इसके अंदर फसाद और बिगाड़ पैदा होगा, और हकीकत है कि आज ज़हर अल फसाद की कैफियत दिखती है। फिर इसके कुछ इनफरादी असरात होते हैं, यानी फिर बेटियां और लड़कियां और औरतें वाकई सोच में पड़ जाती हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप कुछ ज़्यादा ही सख्ती करते हैं। सच बताइए, जितनी आप पे पाबंदियाँ थी, कि आज आपकी बेटियों पर हैं? आज बात तो कीजिए अपनी बेटी को, वो आपको झट से जवाब देगी। ये इनफरादी असरात है। इसी तरह फिर मुआशरे पर असरात पड़ते हैं। माशरे पे कैसे पढ़ते हैं? देखिए, घर घर में तो बिगाड़ है। माशरा तो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बनता है। ब्रिक आपका मेरा घर है, हर घर एक ईंट है, जैसी ईंट होगी वैसा माशरा होगा। और सबसे बड़ा असर पड़ेगा इस फसाद और बिगाड़ का आखरत में, कि जब रो रहे होंगे और पीछे जा नहीं सकेंगे और कहेंगे लौला अखरतनी ला जलिन करीब, अल्लाह एक बार मुझे पलटा तो सही। दो में से जो एक ख्वाहिश होगी वो क्या क्या होगी? वाकुम मिनस सालिहीन, कि मैं अच्छे लोगों में बनूंगा, मैं नेक हो जाऊंगा। पढ़ेंगे आगे जाकर आप इंशाल्लाह ये बात, देखिएगा कि औरत की आज़ादी के फितने के माशरे पर क्या असरात पड़ते हैं। ऊपर कहा है ना कि माशरे पर असरात पड़ते हैं, तो ज़रा इनको तो नोट कीजिए। पहली बात है कि मिक्स गैदरिंग्स आम होंगी, इख्तलात मर्दोजन। फिर फहाशी और उरियानी आम होगी। किसी महफिल में जहाँ दोनों जेंडर जाते हैं, वहाँ ज़्यादा कॉन्शियस होके जाते, दो नहीं, औरतों की तो फितरत ही ना मिजाज में था बनना संवरना और दिखाना और लुभाना। मर्द भी उस दिन टाई पैंट पहन कर जरा जाते हैं कि देखो तो सही, वहां मिस्टर्स एंड मिसिस भी हैं, इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं भी होंगे, लेकिन अमूमन ये देखा गया। मर्द कॉन्शियस हो जाते हैं जहां औरतें भी हों, और औरतें तो ऑफकोर्स होती हैं। तीसरी चीज आप देखिए कि गुनाह कबीरा की कसरत होगी। ये कबीरा गुनाह है किसी मुआशरे में, औरत मर्द का इलीगल रिलेशन जो कबीरा गुनाह, चाहे वो नजरों के साथ हो, हाथों की चिटचैट के साथ हो, दिल में आए हुए इरादों से हो, और फिर असल काम हो ना हो, वो तो बात की बात है। फिर एक और इससे जो नुकसान है आज, वो हम जिंस परस्ती का रुझान है। इस पे तो नोहा करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि इस दौर में जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यानी जिसको कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई पिछले 10-12 साल में, और अब उसके असरात हमारे घरों में भी हैं, हम मुसलमान भी इससे पाक दामन नहीं रहे, और वो है जिंस परस्ती, हम जिंस परस्ती, तो ये भी इसी फितने की पैदावार है। इसी तरह शरह तलाक में इजाफा होता है उस माशरे में जहां औरत की आजादी का फितना उठता है, और नस्लें कमजोर होती हैं, दईफ किस्म की नस्लें हैं, जिस्मानी तौर पर मोटी खोखले, लेकिन जज्बाती तौर पे, रूहानी तौर पे अंदर बहुत कमजोरियां हैं। और ये आखिर में जिस चीज पे रुकती है चीज, द एंड प्रोडक्ट, उम्मत का जवाल। जिसके दिल में उम्मत का दर्द है ना, वो इस पे रोएगा जरूर। आज आपको इस साइकिल को देखकर एहसास नहीं हो रहा? एक औरत की आजादी का नाम लेकर उम्मत को डुबो दिया आज के मर्दों और औरतों ने, और वजह यह थी कि हमने इल्म को आम नहीं किया, अपने बच्चों को बचपन से ही इन चीजों का सबक कम दिया, सैटरडे को दिया या संडे को दिया, वंस अ वीक और 5 दिन, और इधर दिया 3 घंटे की क्लास, इट्स टू मच, संडे स्कूल 3 घंटे से ऊपर ना हो, और उधर माशाल्लाह 6 से 8 घंटे। इस जुर्म है आज के माँ बाप का, अल्लाह ताला उनको माफ करे और अपनी इसलाह की हम सबको तौफीक दे। एक और पॉइंट नोट कीजिए कि औरत की आजादी के फितने में मुबतला औरतों के इनकी इनफरादी जिंदगी पर क्या असरात है। इसको सुनकर तो आप कांप भी जाएंगी। पहले माशरे के सुने असरात, और अब इनफरादी जिंदगी के सुन लीजिए। पहली बात है कि पर्दे और हिजाब की पाबंदी नहीं करती। कैसे करे बंदा, दिल पे पर्दा आ गया तो बाहर का पर्दा तो बोझ लगेगा। वही कहते हैं ना, जो नाखूब था वो खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। ये शेर जो मैं पढ़ती हूँ, खुदा के लिए इसको नोट ना कीजिए, ये सिर्फ उसकी रूह बोलती हूँ, मुझे शेर नहीं आते, सब गलत होंगे। अगर आपने अभी तक 2-4 जुमले सुने हैं पिछले पारों में, सब इधर ही छोड़ दें, सिर्फ उसकी रूह को ले लिया करें। ऐसी औरतें जिनके दिल में आजादियों के शौक होते हैं, वो फिर कहती हैं ये तो रुकावट है। इसी तरह फिर तजलील का सामना होता है और शोपीस बनना पड़ता है। आप काउंटर्स पे एक लड़की को फुल मेकअप में मुबतला करके खड़ा कर देते हैं ताकि शाम को 1,000 क्रोन लेकर आए। इससे भी बड़ी अपनी बेटी की कोई जिल्लत करवा सकता है, इल्ला माशाल्लाह। फिर इसी तरह बच्चों की परवरिश से गफलत होगी, और अगर अल्लाह ने अपनी रहमत कर दी तो इबॉर्शन होंगे, करवाना पड़ेगा क्योंकि जॉब पे हैं, अभी पढ़ रही हैं। आज के बच्चे अपनी माओ की परवरिश से क्यों महरूम है? इसलिए कि माँ उसी वक्त में किसी और के बच्चों को देख रही है, लेकिन फर्क इतना है कि उधर पैसे मिलते हैं, इधर नहीं मिलने थे। अपने बच्चे 10-10 डॉलर लेकर फिरते हैं। एक औरत जो जॉब पे थी और बच्चे को इग्नोर करती थी, तो एक दिन घर में आई तो उसके बच्चे ने उससे ये सवाल किया था। खुलासा उसका ये, मैंने बहुत दफा दरसों में वो वाक्य सुनाया हुआ है, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये है कि वर्किंग वूमेन करे काम, मजबूरी है करे, शौक ना बनाइए, और अल्लाह ना करे कोई मजबूर हो। अल्लाह ने आपको ये हक दिया है, हासिल कीजिए। अगर छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई हलाल हराम की बातें नहीं हो रही, सिर्फ एक सोच देनी कि आपकी जरूरत अगर आपके बच्चे को है, आपके घर को है, और आप इसकी गफलत की बुनियाद पे कहीं और काम करें और उसका असर आपकी जिंदगी पे आए, ये नुकसानदेह। जो माँ आई जॉब पे से, तो बच्चा काफी देर से इंतजार कर रहा था, तो माँ से पूछा कि मामा आपको कितने पैसे मिलते हैं 1 घंटे के। माँ को गुस्सा आ गया जरा बरसी कि तुम क्यों पूछ रहे हो। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि बच्चे का तो चेहरा उतरा हुआ है, तो कहने लगी कि 10 डॉलर या 20 डॉलर। तो बच्चा कहने लगा कि मामा मुझे 10 डॉलर मिल सकते हैं। माँ और भी बरस पड़ी, अच्छा इसीलिए पूछ रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चा रोता वो ऊपर चला गया अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद जब माँ का गुस्सा उतरा, कहने लगी मैं क्यों इतने गुस्से में आ गई। और असल में वो औरत गुस्से में आएगी जो बेचारी सुबह से निकली हुई है, वो कैसे घर की जिम्मेदारियां भी निभाए और बच्चों को भी पाले और पैसे भी बनाए और बाहर के बोझ को ले। खैर ऊपर गई तो बच्चे को प्यार किया, पर्स में से 10 डॉलर निकाले, कह लो मेरा बच्चा क्या लेना है इसका। बच्चे ने अपने तकिए के नीचे एक चुड़ा मुड़ा सा 10 डॉलर का नोट, जो पता नहीं कितने दिन की कोशिशों से उसने जमा किया था, वो निकाला और ये माँ के हाथ के $10 लिए और ये वापस माँ को दिए कि मामा क्या मैं आपसे 1 घंटा खरीद सकता हूँ, यानी मुझसे $20 ले लो लेकिन मुझे 1 घंटा दे दो। जब नस्लें इस माहौल में पलेंगी तो मुझे बताइए कि क्या फिर वहाँ मोहम्मद बिन कासिम और हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा जैसी शख्सियत पैदा होंगी। तो आज औरत ने आज़ादी मांगी तो माँ बनने से आज़ादी मांगी और बच्चों की सही परवरिश से आज़ादी मांगी। इसी तरह शौहर और घरेलू जिम्मेदारियों से गफलत होती है, ऑफ कोर्स होगी। देखिए शौहर भी गया सुबह 8 बजे तो बीवी भी गई। बाज़ दफ़ा तो बीवियां पहले निकलती हैं क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों को डे केयर्स में छोड़ना है, और वो भी काम करके आया ये भी करके आई। मर्द तो वैसे भी जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग होते हैं, औरत तो नाजुक है। मुझे बताइए क्या दोनों शाम को थके हारे आए तो बाद में घर में खाना कौन मांगेगा, रोटी कौन पकाएगा, वो भी बीवी करेगी ना। आपने उस औरत पे बहुत बोझ डाल दिया। आज से शायद 30 साल पहले किसी बुजुर्ग का जुमला सुना दूं कि जो वेस्ट में आए किसी कंट्री में, उस वक्त तो बड़ा हवा था कि क्या ये मुल्क है, क्योंकि देखे नहीं होते थे लोगों ने। तो उन्होंने जाकर जो जुमला बोला, उन्होंने कहा वेस्ट में मैंने औरत को बड़ा मजलूम देखा है। और वो पीछे बात रही थी। हम इसको आज़ादी कहते हैं? मुझे आज़ाद करो, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सेलफोन चाहिए। जिन्होंने बेटियों को इस तरह पाला आज वो दुखी हैं अल्लाह की पनाह में। फिर इसके बाद हुकूकुल्लाह में कमी होती है, मकसद हयात से दूरी होती है। कौन नमाजें पढ़े 5, और वो भी जोहर असर जो कि जॉब पे आ गई, और घर आके 5 इकट्ठी पढ़ी, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, कहाँ गए आपके हुकूकुल्लाह? और मकसद हयात पैसा कमाना रह जाता है नेकियां कमाने और अल्लाह को राजी करने की बजाय, और इसी तरह इजाफी बोझ और सुकून बरकत का खत्म होना। मेरा गुमान है कि एक एक जुमले पे आपका दिल गवाही देगा कि बात दुरुस्त है। तो फिर क्या कीजिए, मोमिन औरतें क्या करेंगी? अल्लाह के हुक्म को मानेंगी। मोमिन औरतों के लिए हुक्म क्या है? शरीयत की पाबंदी का। औरत की आज़ादी के फितने में मुबतला औरतें शहवत और जाहिलियत के रास्ते पे चलकर अपनी आखिरत बर्बाद कर लेती हैं। अब ये सारी बातें सुनते वक्त क्या आपको अल्लाह ताला पर प्यार आया? मुझे तो इतना प्यार आ रहा है कि टूट के, जिसको कहते हैं प्यार आना, कि इतनी सहूलतें तो माँ बाप भी नहीं दे सकते बेटी को, शौहर बेचारे भी इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते जितना अल्लाह ताला एक औरत के बारे में कहते हैं। और अब अगली आयत में उसकी वजह बयान की जा रही है, आयत 28 में, कि देखो मालिक ये सब क्यों करता है। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है कि तुमसे तख़फीफ करे, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया, दईफा। इंसान जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर है, इससे भी ज़्यादा अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जिस पे आज के पारे का थीम है, तो जज्बाती तौर पे बहुत ज़यीफ़ है। मर्द की कमज़ोरी औरत है। जवान होते ही लड़के को लड़कियों में कशिश होगी। ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ताला के इस इरादों पे और इन चीज़ों पे गौर करते हुए हम भी अपने ऊपर बोझ कम कर दें। जो कुछ हमने लात लिया है, अल्लाह से कहिए कि इसको अच्छे तरीके से निकाल दें। फिर आगे अब आप देखिए कि एकदम मौजू पलटता दिखेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ मन वालो अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से हो। खरीदो फरोख्त और अपने आप को कत्ल न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। और जो शख्स ये नाफरमानियां यानी सरकशी और जुल्म से करेगा तो अनकरीब हम इसको आग में दाखिल करेंगे। सोच रहे हो कैसे, इतनों को कैसे करेगा? तो फरमाया वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, ये अल्लाह पर बहुत आसान है। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिससे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत व बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। और इसकी आरजू न करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बास को बास पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए इनमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से इसका फजल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। क्या पता चला इस हिस्से में? पहली बात है कि दूसरों का माल ना हक ना खाओ, क्योंकि इस्लाम ने मुसलमान को दूसरे मुसलमान के माल में हिस्सेदार बनाया है, शर्त एक है, तीब नफ्स, उसकी मर्जी और उसकी रजामंदी के साथ। जितना ज्यादा अल्लाह ताला आपको मुझे सोशलाइजिंग में और खानदानी ताल्लुकात में एक दूसरे से फायदा उठाने का हुक्म देते हैं, उसको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि इंसान दूसरे की हर चीज खा सकता है। लेकिन यहाँ हदबंदी की जा रही है। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है कि वो खाना रखा है खा लो, और भाई का ना खाना, ये ना सारा खा जाना, सबने खाना है, इसी तरह इस्लाम भी आपको मुझे दूसरों के माल से फायदा उठाने की दावत देता है, लेकिन हक के साथ। और बातिल में वो हर बातिल चीज आती है जो कि अल्लाह के कुरान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मिलती है। दूसरी बात क्या है, तिजारत के साथ ये मामला कीजिए। माले तिजारत दोनों की खुशी के साथ है तो ठीक है, यानी हिडन चीजें ना हो। और इसमें आप देखिए कि हमारे असलाफ कितने केयरफुल थे, पेट में जो जाता है वही बाहर आता है। आप गाड़ी में खराब पेट्रोल डालिए, झटके देगी, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। तो इस्लाम का पैगाम क्या है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दो चीजों का एहतराम इस्लाम में बहुत है, नंबर एक जान का और एक माल का। किसी भी कल्चर की जड़ों में ये दो एहतराम शामिल हो जाए तो उस माशरे में अमन होगा। इसके बरक्स हराम का माल बरकत से खाली, उसमें कसरत तो होगी बरकत नहीं होगी, उसमें बीमारी है। जुमला लिखिएगा, हराम के माल का नतीजा घर में बीमारी, बेबरकती। तो दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा हो। दूसरी चीज इस हिस्से में पड़ी, ला तमन्नाओ, कोई तमन्ना ना करे दूसरे को देखकर ये ना कि हाय आई विश मैं ऐसी होती। आपको अल्लाह ने जिस घर में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, शक्ल जो दी शुक्र है, लड़का बनाया कि लड़की बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैसला है आपका हर मामला। इसमें अपने आप को परेशान ना करें। और फिर इसके अंदर औरत और मर्द के कुछ कमाने की बातें हैं। बाज़ लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कम इल्मी के साथ जब इल्म दिया तो उन्होंने कहा, देखा कुरान कह रहा है ना कि औरत अपनी कमाई करे मर्द अपनी कराए, और मर्द अपना सेब खरीदे और औरत अपने लिए सेब खरीदे। तो याद रखिए, एक तसव्वुफ का लफ्ज़ जहाँ भी कुरान में आता है अमूमन ये दुनियावी रिस्क के लिए नहीं, नेकियों को कमाने के लिए आता है। दुनिया के माल पे जब भी बात आएगी वो फजल की आएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे सीधी समझ दे, और कभी भी जज्बातियत में या जोश में आकर हम गलत काम ना कर दें। अल्लाह से मांग लीजिए, बंदों से क्यों मांगते हैं, उन पे क्यों नजरें लगाते हैं। वली कुल लिंजल न मवालिश, माँ बाप या कराबत और जो छोट मरे इनके वारिस हमने हर उस शख्स के लिए मुकर्रर कर दिए जिनसे तुमने अपने हाथों माहदा किया है, इन्हें इनका हिस्सा दो। हकीकतन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर है। ये विरासत के कवानीन की इन बिटवीन आयत है जिसको बाद में आयत विरासत से बदल दिया गया। विरासत के मामले में भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ये भी एक फितना है। विरासत की गैर मुनसिफाना तकसीम एक फितना है। कहीं भाई बहनों का हिस्सा ना खा जाए, कहीं बीवियों को अलग ना कर दिया जाए, कहीं माँ बाप को पीछे ना कर दिया जाए। बास दफा इंसान इस तरह के काम कर लेता है तो बहनों को मीरास से महरूम करना एक फितना है। और आप नोट कर रहे हैं, बुनियादी था औरत की आजादी का फितना, और आज उस बारे के अंदर फितनों में से फितने निकल रहे हैं। आज तो घर घर फितने हैं जहां औरत के हकूक पामाल हो रहे हैं। इसी तरह औरत का विरासत में हिस्सा कम एक सोच दे दी लोगों को, ये फितना है कि औरत को विरासत में कम क्यों देते हैं, हालांकि कहाँ कम मिलता है। अगर भाई को दुगना मिल रहा है बहन की नस्बत, तो भाई ने अपनी बीवी को भी तो हक मेहर देना था, और बीवी को अपनी शादी के बाद शौहर से भी तो हक मेहर मिलना है। एंड पे भाई के पास फिर एक रह जाना है, बहन के पास दो हो जाने हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से बदगुमान होने से बचाए। आगे वो है आयत जिसके नाम पे आज बड़ी बड़ी एनजीओ बन चुकी, विमेन राइट्स, लिप्स, और उन्होंने न जाने क्या कीचड़ उछाला इस्लाम पे कि इस्लाम का मिजाज क्या है, औरत मर्द की बराबरी जिसको आज वेस्ट में इक्वेलिटी कहा जाता है। अर रिजाल कवामून अलनिसा, मर्द औरतों पर कवाम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। पस नेक फरमाबरदार औरतें खावन की अदम मौजूदगी में बहफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददमागी का तुम्हें खौफ हो इन्हें पहली बात नसीहत करो, फिर दूसरा स्टेप और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो, और तीसरी नागुजीर चीज के इन्हें मार की सजा दो। कितनी हल्की, एक टूथपेस्ट एक पीलू की मिसवाक जितनी। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर रास्ता तलाश ना करो, यानी अब ताने ना दो के सीधी हो गई हो ना। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। जरा सा इसमें अल्लाह ताला की इस खूबसूरत बांट को देखिएगा। पहली बात, एक ही लफ्ज़ रिजाल आया, हस्बैंड नहीं आया, बाल बाउल नहीं आया। ये आयत सिर्फ बीवी और शौहर के ताल्लुक के लिए नहीं है, बात समझ गए। शायद आपने कभी भी रिजाल के लफ्ज को इस एंगल में ना समझा हो, इसलिए शिद्दत से बोल रही हूं कि मर्द कहा शौहर नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि मर्द हर रूप में, चाहे वो बाप की सूरत में हो तो बेटी का कवाम है, शौहर की सूरत में तो बीवी का कवाम है, और बाद में बेटा बन के वो घर में माल लाने लग गया तो वो माँ का कफील है। अल्लाह ने औरत को तो पहले रानी बनाया था, पहले शहजादियों की तरह बापों की आंखों की ठंडक होती हैं। कुछ बाप लाड से कहते भी, ये तो मेरी शहजादी है, छोटी बच्ची शहजादी लगती है। फिर जरा सी बड़ी होती है, बाप उसको स्कूल में जाता है लेकर, और बड़े प्यार से उसकी फीस देता है। जरा सोचिए तो सही कि जवान होकर यानी शादी तक आपके बाप ने आप पर कितना माल लगाया, कभी ताना दिया? कभी भी नहीं देते, क्योंकि अर्रिजालु कवामून अला निसा। फिर इसी तरह शौहर के सिलसिले शुरू होते हैं, अच्छे शौहरों ने कभी बीवियों को ताना नहीं दिया होगा। हाँ, बीवी कमा ले तो फिर जरा ले तो आए ग्रोसरी, उस दिन 4 दफा सुनाएगी, ये ग्रोसरी मैं अपने पैसों से लाई हूँ, ये बिल मैंने दिया। औरत के मिजाज में पैसा लगाना ही नहीं है। तो लिहाजा औरत के 4 मुअज्जज़ रिश्ते और इनके मुतल्लिक इस्लाम की हिदायत। पहली बात देखिए, बाप बेटी के साथ कैसा मामला रखे। पहली बात यह है कि उसकी आला परवरिश करे। कवाम के लफ्ज़ में 2 चीज़ें नोट कीजिएगा, एक तो है रिस्क लाने वाला, जिम्मेदारियां अता करने वाला, और दूसरा तरबियत का जिम्मेदार। जी, अब इस लफ्ज़ को ज़रा सा बर्दाश्त कीजिएगा, और जितनी औरतों को मुझ पर गुस्सा आए वो मुझे अभी से माफ़ कर दें, क्योंकि इस लफ्ज़ पे मैं गुस्सा बढ़ाता है, और ख़ास तौर पर जब कुछ लोग कवाम के लफ्ज़ के आगे हुक्मरान लिख देते हैं, हाकिम लिख देते हैं, कहते हैं हाँ जी हम कोई इनकी महकूम है तो नहीं। 2 चीज़ों का मर्द को एहसास दिलाया जा रहा है कि घर में रिस्क तुम लाओगे। अगर बाप हो बेटी के मामले में हो तो घर में उसकी तालीम, उसकी तदरीस, खाना, कपड़े बाप लाता है। फिर इसी तरह से दूसरी चीज़ बाप के अंदर क्या है, कवामियत का लफ्ज़ अरबी में देख लीजिए तो तरबियत का भी जिम्मेदार होता है। वो तालीम दे, तरबियत दे, उसको अच्छे स्कूल में डाले, उसकी दीन दुनिया की तालीम का फिक्र करे। फिर इसी तरह शफकत और मोहब्बत भी दे। इसके बाद बीवी के साथ ताल्लुक देखिए। बीवी के साथ जब एक शख्स का ताल्लुक होता है तो नंबर एक हुस्ने सलूक, मोहब्बत, ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला, सारे ही हकूक की हिफाजत करने वाला, और दिल और घर की मलका बना के रखने वाला, फिर उसको मेहर भी दे, उसका नान नफका भी दे। ये सब तो हमें पता है, लेकिन एक चीज़ भूली हुई आज कुछ लोगों को, कि मर्द बीवी की तरबियत भी करेगा, जिसका जिक्र इस आयत में हम पढ़ चुके हैं कि बिगड़ी हुई बीवी को कैसे सुधारो। ये नहीं कि डंडा पकड़ लो, गुस्सा करो, चिल्लाओ, नहीं, पहले प्यार से बात करो, नसीहत करो, बीवी समझ जाएगी, समझ जाती है तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बाद बिला वजह बात नहीं करनी। और याद रखिए कि बीवी और शौहर का ही मामला ज्यादा देर चलता है, इसीलिए उसी पे मसले आते हैं। गोया कि अल्लाह ताला ने बीवी को और सारी ही औरतों को मुख्तलिफ अंदाज में जिम्मेदारियों से आजाद किया जा रहा है। और इसी तरह आप देखिए कि अगर भाई कफील है, यानी बाप नहीं रहा तो भाई है, तो बहन के साथ ताल्लुक है, एक दोस्त और गमख्वार हो, मान होते हैं भाई बहनों के लिए, इज्जत देने वाले होते हैं। आप किसी भी घर में जाएं और 3-4 बहन भाई और खूब लड़ें छोटी छोटी बातों पे, मान लीजिए सगे बहन भाई हैं, जो आपस में लड़ते नहीं हैं वो सगे नहीं हैं, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, जरा 4 बच्चों को इकट्ठा बिठाइए फिर आप पढ़िए, देखिए क्या होता, जंग लगी होगी। लेकिन जब बड़े होते हैं और जब मुख्तलिफ घरों में जाते हैं, पहले तो माँ बाप के घर में ही इकट्ठे थे, पहले तो माँ बाप के घरों में रहते थे बहन भाई, अब एक दूसरे के दिल में रहते हैं। अफसोस से कहूंगी कि आज वक्त के साथ साथ जो फितने उठ रहे हैं और जो रिश्ते नाते बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें आज भाई बहनों का ताल्लुक बड़ा कमजोर हो गया। आज वो मान नहीं दिखता भाई पे बहन को, आज वो प्यार नहीं मिलता, भाई जार ही नहीं करते। हाँ, घर जाओ तो इज्जत बहुत करेंगे, खातिर मदारत बहुत होगी, क्योंकि वो भी आज का एक फितना बन गया कि घर जाकर किसी को 10 चीजें ना पेश की तो गोया कि आपने उसकी इज्जत ही ना की। तो भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है, और अक्सर मैं कहती हूँ कि जब सारे खुश होते हैं ना अपने अपने घरों में, तो नहीं पता चलता इस रिश्ते में कितना प्यार है एक दूसरे से। ये उस दिन पता चलता है जिस दिन खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक दुखी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी बहन जब भाई के घर में कोई परेशानी हो, उस दिन जो अंदर से खिंच उठती है ना, उससे पता चलता है कि रिश्ता जुड़ा हुआ है। और दूसरी खिंच पड़ती है इनके बच्चों को देखकर, उनकी खुशियों पे और उनकी गमियों पे जो दिल दुखता है, उससे पता चलता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है। फिर आखिरी एक और ताल्लुक जो बनता है वो माँ के साथ बनता है। कभी कभी बाप चले जाते हैं, दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, तो माएँ अपने बेटों के हाथों में आ जाती हैं, फिर कवामियत का काम माँ के साथ करना है। लिख लीजिए इस पे, तो चाहे किताबों की किताबें लिख लीजिए। नंबर एक, हुस्ने सुलूक। ये सारा सीखेंगे बनी इसराइल सूरत में इंशाल्लाह, और आगे भी सीखेंगे सूरत लुकमान और सूरत अलअहकाफ में भी सीखेंगे। फिर इसके बाद तकद्दुस और तकरीम, फिर तामीले हुक्म, फिर खिदमत गुजारी। ये चार चीज़ें सिर्फ नोट कर सकें आपके लिए। इसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा छुपा हुआ है, एक खूबसूरत बेटा है, और अगर माँ बेटी के पास है तो बेटी भी उसकी कवाम बन सकती है। लेकिन इस उम्र में डांटना झिड़कना, देखिए इंसान अपने हालात की वजह से परेशान हो सकता है, बदमिजाज हो सकता है, लेकिन ये कमज़ोर हो गए हैं असल में, ये फ्रेजल हैं। इस उम्र में दिल भी कमज़ोर हो जाता है, हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, और इंसान की बर्दाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तो बिछ जाइए, जितनी दुआएं लेंगे उतना अल्लाह आपको ऊपर ले जाएगा। बाज़ दफ़ा खिलाते पिलाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन दूसरा मामला बिगड़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा इज्जत बहुत करते हैं, बात नहीं मानते। तो इन चार चीज़ों को टिप बनाकर रख लीजिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपको माँ पे जो प्यार आता है ना, उससे ज़्यादा इस्लाम पे प्यार आएगा। बहन से जो मोहब्बत महसूस होती है, उससे ज़्यादा इस्लाम पे आएगी। और बीवी और बेटी के मामले में भी यही है। इतना प्यारा दीन अल्लाह ने मुझे और आपको दिया, लेकिन इसके बरक्स फितना क्या उठा? अल्लाह अकबर, बराबरी का फितना, इक्वेलिटी। फितना ये है असल में हमारे पारे का मेन टॉपिक, कि औरत और मर्द बराबर हैं। आप देखिए कि इस्लाम ने औरत की इफ्फत और हया को, और इसके तकद्दस के तहफ्फुज़ के लिए इसको मुआशी झमेलों से दूर रखा, क्योंकि अर रिजालु कवामून अला निसा। आपने ये जुमले नोट किए, यानी औरत की इज्जत भी महफूज रहे, उसकी हया भी ना पामाल हो। क्योंकि एक औरत जब माल कमाने के लिए या जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलती है, कुछ ना कुछ उंगलियां तो उठती हैं, निगाहें तो पड़ती हैं ना। देखिए काउंटर पर खड़ी एक बच्ची अपना काम कर रही है शराफत के साथ, क्या हर गाहक उसको नहीं देखेगा? हेलो हाय बाय नहीं होगी? हो सकता है किसी एक को उसकी आंखें अच्छी लग जाएं, पीछे लग जाएगा। औरत छुपी ही रहे तो अच्छी, औरत का तो मान ही छुपी हुई चीज़ है। तो ज़रूरत है इस बात की कि औरत को औरत रहने दिया जाए, मर्द ना बनाए, क्योंकि आज के दौर में औरतों को मर्द बना दिया गया। सिर्फ एक ही चीज़ में औरत और मर्द में फ़र्क है, और वो है बच्चा पैदा करने में। तो क्या सीखा हमने? अल्लाह ताला औरत को जिम्मेदारियों से आज़ाद कर रहा है, कमाने की, बनाने की। हाँ, औरत सुघड़ होगी, थोड़ी कमाई वाले मर्द को असिस्ट करेगी, घर में कुछ काम करके पैसे बना दे, किफायत शारी से करे। ये तो औरत का मिजाज था, तभी तो कहा फसालेहातुन कानेतातुन। और पहले औरतें ऐसे थी, देखिए हमारी नानियां दादियां जॉब्स नहीं करती थी। जैसे कोई कहता है मेरा तो ये बस शौहर ही कमाता है, तो भैया आपके अब्बा भी तो अकेले ही कमाते थे, आपके नाना दादा भी ऐसे थे। अच्छा, ये भी एक फितना दे दिया, और हमारी यंग बच्चियों के लिए ये जुमले जरूर फायदा देंगे। ये ख्याल कि एक कमाएगा तो पूरी नहीं होगी, नहीं, ये जेम बना दीजिए कि पहले दौर की माएं जॉब्स नहीं करती थी, पैसे नहीं कमाती थी, लेकिन वो पैसे बचाती थी। उनके सरहानों और गद्दों के नीचे फिर भी हजारों मिल जाते थे, कफायतशार थी, घर को चलाना आता था, बिगड़े को बना लेती थी, उधड़े को सी लेती थी, खाने को जाया नहीं करती थी, आधा सिंक में नहीं जाता था, हर रोज नया खाना नहीं पकता था। आज औरत उसी औरतपन पे आ जाए, हमारे मर्दों को इतना कमाना ही नहीं पड़ेगा। आज भी इस दौर में जो कहते हैं 10,000, 20,000, 25,000, और अपने मुल्कों के फिगर्स लूं तो वो तो लाखों में है, इसमें गुजारा नहीं होता, आज भी होता है। शर्त यह कि औरत औरत बन जाए और उसके अंदर ये सारी खैर आ जाए। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये सारी बातें आज मैं अपने लिए कर रही हूँ, सालेहा बने। आप देखिए कि ये जो फसालेहात है ना, यहां से असल में औरत से खिताब है, शुरू सूरत से लेकर अब तक तो मर्दों की बातें थी। तो ज़रूरत इस बात की कि मर्दों को मर्द रहने दिया जाए, औरतों को औरतें बनाया जाए। आज ये दोनों चीज़ें बिगड़ी तो खराबी हुई, इसीलिए अब अगली आयत की रोशनी में इंशाल्लाह हम देखेंगे घर के बिगाड़ को कैसे दुरुस्त किया जाए। आयत 35, वइन खिफ तुम शिकाक बैनिहिमा, अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो तो एक मुनसिफ मर्द वालों में से और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और पूरी खबर वाला है। घर को टूटने से बचाओ। यहां चंद बातें कहने की इजाजत दीजिए। जब मर्द कवाम बने, जिम्मेदारियां अदा करे, اور عورت صالحات اور قانتات کے درجے پہ بہت ہی خوش مزاج ہو، اچھے طریقے سے ٹیکل کرے اپنے مرد کو، گھر بھی اچھا چلائے، تو یاد رکھیے کہ پھر جھگڑے نہیں ہوتے. لیکن جب ایسا نہ ہو تو پھر گھر ٹوٹتے ہیں. سوال لکھیے خود سے کہ آج گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم اپنی ذات سے نہیں شروع کریں گے، گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، گھر میں سکون اور خوشی نہیں ہوگا، ہم دنیا کو کیا دیں گے؟ تو عورت کو عورت بنائیے، صالحہ قانتہ، مرد قوام بن جائے. آج مرد کم کماتے ہیں، عورتیں زیادہ کماتی ہیں. آپ دیکھیے گھر گھر میں، پہلے تو ماسیوں کا ایشو تھا نا، گھر گھر کام کرتی تھی، سارا دن جا کر جھوٹے سچے کھاتی تھی اور گھر جا کر نشئی شوہر کی ڈانٹ بھی کھاتی تھی. ایک جملہ لکھ لیجئے، جو مرد کمائے گا نہیں وہ بدمزاج ضرور ہوگا. کیونکہ یہ ایسی ہے کہ کچھ کرنا ہے آپ کو، کوئی کرنے نہیں دے رہا. مرد کے مزاج میں کمانا ہے. جتنی خوشی سے وہ صبح اٹھ کر جابس پہ اور کاموں پہ جاتے ہیں آپ جا سکتی ہیں. مثال ہے پاکستان کا کوئی بازار جو آپ نے کبھی دیکھا ہو، انارکلی دیکھ لیجئے، کراچی میں صدر، آپ ایک دفعہ چلے جائیں پورا سال نہ جائیں کبھی. مرد بیچارے صبح اٹھ کے آدھا پونا کھا پی کر نکلتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں. کبھی ہول سیل دکانوں کو دیکھیے، کماڑی کو دیکھیے اور رنچھوڑ لائن کو دیکھیے، اندر گلیوں میں جاتے ہیں، گولی مار کا علاقہ اور لالو کھیت جاتے ہیں. آپ میں جا سکتے ہیں، اللہ مردوں کو سلامت رکھے. وہ خوشی سے جاتے ہیں، جانے دیجیے. جو مرد اپنا کام کر کے آتا ہے شام کو خوش آتا ہے. گھر بٹھائیے ایک مرد کو، ٹی وی دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، ادھر ادھر چٹ چٹ کرے گا، آدھا دن سوتا رہے گا، وہ بدمزاج ہوگا. گھر کا بگاڑ ہی تب آتا ہے کہ جب یہ قوامیت عورت کے ہاتھ میں آتی ہے. اور عموماً دیکھیں جو عورتیں کماتی ہیں پھر ان کے مرد نہیں کماتے. اب عورت پہ آتے ہیں، عورت کماتی ہے. ایک عورت وہ ہے جو کماتی ہے تو خود بر لگاتی ہے، وہ بڑی خوش رہتی ہے، کہتی پوچھنا ہی نہیں پڑتا، لینا ہی نہیں پڑتا، کسی بوتیک کا جوڑا آرڈر کر دیا، زیور لیا اور ہر مہینے کوئی چوڑیاں لے لی تو کچھ چلیے، وہ بڑی خوش رہتی ہیں. لیکن ایک دوسری قسم، جو عورتیں کمائیں اور ان کو گھر پہ لگانا پڑے، وہ احسان جتلائیں گی. مرد کبھی نہیں کہے گا یہ آم میں لے کے آیا ہوں. مرد لائے گا پیٹی لے کر آئے گا، عورت لائے گی کلو لائے گی. مردوں کے حوصلے ہوتے، کبھی ان کو بیگز بھر کے لاتے ہوئے تو دیکھا کریں. میں نے تو آج تک ہر روپ میں جو مردوں کو دیکھا اسی طرح دیکھا ہے کہ مردوں کے ہاتھ ہمیشہ بھرے ہوتے ہیں. اور اتنا لانا، ہمارے اسلاف، ہمارے نانا دادا، ہمارے والد جب کھانا لے آتے تھے یا گروسری اور فروٹ، گھر میں جگہ نہیں رہتی تھی. بان ٹوس کو بھی، دوست کو بھی دو کھلاؤ، یہ مرد کی شان ہے، کرنے دیجیے. جب اس کے ہاتھ باندھے تو ایسے کہ ہتھ کڑی ہے. اس کے برعکس عورت، بس اس کو سمجھا لے اور جتنی صالحہ ہوگی شوہر کا مزاج پہچانے. دیکھیے بچی کو آپ نے ماسٹرز تو کرا دیا، شوہر کو پڑھنا نہیں سکھایا، معذرت کے ساتھ. اور دیکھیے تانا ماں کو ملتا ہے. آج ایک اور نقطہ نوٹ کریں جو میں نے کبھی نہیں پہلے بتایا آپ کو. عموماً جب بیٹیاں سسرال میں جا کر یا شوہروں کے گھر جا کر کوئی بد مزاجی کا رویہ اختیار کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے. آج ایک جملہ اس آیت سے لے کر جائیے، قوامیت میں باپ کا بھی ذمہ ہے بیٹی کی تربیت کرنا. اور میں بہت ہی ڈرتے ہوئے کہوں، بظاہر مائیں بری بنتی ہیں لیکن بیٹیاں اکثر اپنے باپوں کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہیں. باپ نے کوئی نہیں کہتا تربیت کی ہے، تو کیا کیجئے؟ اگر شوہر غصے میں ہے کوئی بات نہیں، برداشت کیجئے. دیکھیے شوہر کو غصہ آ جائے وہیں آپ سٹل سٹاپ ہو، جیسے کہتے ہیں نا پتھر کے بن جاؤ، بچے گیم کھیلتے تھے سٹاپ، وہیں سٹاپ ہو جائیے، ڈونٹ موو. کیونکہ غصے میں آئے ہوئے شخص کو کتنی بھی اچھی سے اچھی بات آپ سنائیں گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. شیطان اپنے اس شاگرد کے کندھے تھپتھپاتا ہے جو شوہر بیوی میں جھگڑا کراتا ہے. آپ ایک چیز مشاہدے سے آج کے بعد نوٹ کرنا شروع کریں، شوہر بیوی میں عموماً بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے اور اچانک ہوتا ہے. کتنے ساتھی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، وہ نوٹس میں ون لکھ لیں. اچھے بھلے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہوئی، ایک دم شوہر کا مزاج بدل گیا. یہ وہ شیطان اپنے اس ساتھی سے کرواتا ہے جس کو اس نے صرف ایک کام دیا ہوا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا کرا کرو. اس کو اپنا بیٹا کہتا ہے. حدیث کھول لیجئے آپ اگر آپ نے نہیں کبھی پڑھی تو. بلا وجہ ہوتا ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. اور دوسرا اچانک، اکثر بیویاں نہیں کہتی ابھی تو اچھے بھلے تھے، یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور واللہ ہی کچھ نہیں کہا ہوتا لیکن اس شوہر کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دے دی. پھر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بیوی کچھ اور سوچتی ہے، شوہر کچھ اور، وہ کسی اور موڈ میں بات کرتی ہے، وہ کسی اور موڈ میں لیتے ہیں. بیوی کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ موقع سمجھے. کبھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، بیوی کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مرد اس کو پا ہی نہیں پا رہا، کیا کریں، پھر صبر کیجیے. کبھی جذباتی تسکین نہیں کر پاتا جوڑا، بیوی شوہر کو راضی نہیں کرتی، حق کے خاص نہیں دیتی، شوہر بیوی کو راضی نہیں کرتا، کیا کیجیے پھر. حافظات للغیب، شوہر کے رازوں کی حفاظت کیجیے، اس کے عیبوں کی حفاظت کیجیے، اس की डांटें, जो उसने गुस्सा किया छुपाइए, माँ को ना बताइए, बहन को ना बताइए, चिट चैट पे ना लगा दे, देखे इतना चीखे मुझ पे। देखिए अगर 90% शौहर अच्छे हैं और 10% कभी गुस्से में आ जाते हैं, बर्दाश्त कीजिए। हाफिजात लिल गईब, इज्जत कीजिए। मर्द को आपसे सिर्फ इज्जत चाहिए, प्यार वो खुद ही दे देगा आपको। तुम करके ना पुकारें, ये भी हाफिजात है। आज तो कोई बेटे को पुकारे के शौहर को पता ही नहीं, पहले दौर में नाम नहीं लेते थे, फिर कभी मुन्ने के अब्बा और कभी फुलां के चचा और फूफा, अच्छा लगता था। आज तूतकाल, और सबसे बड़ी चीज जो आज के कार्टून शोज, ओपरा शोज में शटअप नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये कल्चर बन गया। वो बीवी बीवी रहने की हकदार नहीं जो शौहर को शटअप कह दे। उर्दू में अगर इसका तर्जमा करें तो आप इस्तग़फ़ार करेंगे। ये तरबियत की कमियां हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि तू तड़ाख करके बात करने की बजाय झुके हुए दबे हुए माहौल में रहिए, मेज की तरह सख्त जिम्मेदार मर्द हो, और फ्लेक्सिबल नरम बेंडेड कुर्सी की तरह की बीवी होगी, तलाके नहीं होंगी, इसलाह करनी पड़ेगी। और घर को टूटने से बचाइए। तो बात तो लंबी हुई, लेकिन असल पारे की थीम यही थी। घरों में सुकून लाइए। हम अपने शौहरों की तरबियत नहीं कर सकते, अगर वाकई वो कुछ कमी बेशी का शिकार हैं तो फिर अपने बेटों की तरबियत कर लीजिए, कल आने वाली बहुओं की दुआएं लीजिए। अमूमन लोग कहते हैं बेटा बाप पे गया, नहीं, अच्छी माएँ अपने बच्चों को समझा लेती हैं कि ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि आज की बच्चियों में वो बर्दाश्त नहीं है। और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बच्चियां जिनमें नशूज है, नशूज को भी चार जुमलों में समझ लीजिए, बड़ा होने का एहसास। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी, मुझे इंग्लिश आती है, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, मैं गाड़ी चलाती हूँ। मर्द बेचारा हो सकता है इन चीज़ों से महरूम हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक किस्म की औरतें, उनसे फिर अल्लाह ताला ने निपटने का तरीका भी सिखा दिया। तो घरों को बचाइए, घर टूटने के लिए नहीं बनते। और ख़ास तौर पे अगर बच्चा आ जाए, एक जुमला और जैम बना दीजिए, बच्चे का वजूद में आना खामोश इशारा है अल्लाह ताला का कि इस घर को ना तोड़ना, वरना आगे जाके पछताओगे और रोगे। और जो औरतें थोड़ा सा दब जाती हैं ना शादी के शुरू के 2 साल 1 साल, और जो मर्द भी जरा थोड़े ज्यादा ही ना 30 मार खां बनने लगे, तो वो फिर हमेशा एंजॉय करते हैं। शुरू में 1-2 साल गड़बड़े होती हैं, फिर सभी सब्र कर लेते हैं, और ये जज्बातियत का दौर है, ये खैर से गुजर जाए तो बात आ जाती है। औरत के तो मिजाज में समझना है, मर्द अगर फाइजू हन्ना कर दे, कुछ मर्द हैं वो भी जल्दी गुस्से में आते हैं, अल्लाह कहते वास करो, दिल में उतरने वाली बात करो। और जब शोहर प्यार से बात करते वल्लाह ही औरत अपने मिजाज के मुताबिक पिघल जाती है, उसमें नरमी है, तो फितरतन वो शोहर से मोहब्बत भी करती है। प्यार से कहेगा वो क्यों अकड़ेगी, मसला क्या है कि वो पहली गलती पे डंडा पकड़ ले और सबके बीच, और माँ को जाके बताता है ये लेके आयो मेरे लिए। जब शोहर बीवी एक दूसरे के राज बाहर निकालते हैं, वो घर नहीं बचेगा। हमारे कल्चर में कहते हैं तीसरा पड़ा तो बात गई, मियाँ बीवी के बीच से आप निकल जाए, दोनों को लड़ने दीजिए, एक कमरे में बंद करें, लड़ मड़ लो, जो फैसला हो हमें बताओ, ना हो तो फिर जो आखिरी आयत पड़ी है फिर बाहर वालों को डालने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस फितने को हम मुसलमानों के घरों से निकालें, और मुसलमान घराने इतने खूबसूरत हों, किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई तलाक का केस रजिस्टर ना हो, कोई क्राइसिस सेंटर में बिगड़ी हुई औरत ना आए बेचारी मार खाती हुई। देखिए लोग खुद आएंगे आपके दीन की तरफ, ये इस्लाम कितना प्यारा है कि इनके घरों में बड़ा सुकून है। और हमारे घरों में तो लॉकडाउन में झगड़े शुरू हो गए, ये तो और इंजॉय करें कि ऐसे लग रहा है कि नई नई शादी हुई है, हम तो इतने अरसे बाद घर में इतनी देर है। कारोबारी मर्द कहाँ दिखते हैं बीवियों को, और जॉब के तकाजों वालों के तो बाहर के ट्रिप्स ही बहुत है, वीकेंड्स पे उनको दूसरे शहरों मुल्कों में जाना है, और आम दिनों में मीटिंग्स और दावतें और ईशाइये। ये लॉकडाउन तो अपना फैमिली लॉकडाउन बनाइए, इसको अपने ताल्लुकात को रिवाइज कराइए। और एक छोटी सी बात करके आगे चलूंगी, और वो क्या है कि इस लॉकडाउन को हकीकत में फैमिली लॉकअप बना लीजिए। अपनी घरों में लड़ने से बिगड़ने से बेहतर है कि वो चीजें लेते रहें कि जिससे फायदा होता है, और वो अक्सर छोटे छोटे सेशन में बहुत तरफ से आपको आ रही है। इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीजें हम शाम के सेशन के साथ भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे घर ठीक हो जाए, कम से कम हम मुसलमानों के घरों में ये कुछ नहीं होना चाहिए। और माओं को चाहिए कि बच्चियों को सॉफ्ट स्किल सिखाएं, उनको पत्थर तरह का एक मर्द ना बना दें। मर्द के मुकाबले में एक मर्द नुमातों वाली लड़की चली जाएगी, घर कभी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए। और ये कुरान अमल की बात है, जब अमल का वक्त आता है तो फिर भूल जाएंगे, तो फिर तो फायदा नहीं होगा। अब आयत 36 जो बहुत खूबसूरत आयत है, इसको उम्महातुश शरिया भी कहते हैं। हर शरीयत में जो अहकामात थे उसी का तस्करा है। वाबुदु अल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करो और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों से और मिसकीनों से और कराबतदार हमसाये से और अजनबी हमसाये से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और इनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, मुराद गुलाम और कनीज। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले शेखी खोरों को पसंद नहीं करता। हकुकुल्ला से शुरू होते हुए हकुकुल इबाद तक पहुंचे हम। जो लोग खुद बखीली करते हैं और दूसरों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं या दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो अपना फजल इन्हें दे रखा है इसे छुपा लेते हैं। हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, सोचिए बस एक शादी ही की तैयारियां जहन में ले लें तो ये आयत का हिस्सा समझ आ जाएगा। दिखावे के लिए तो नहीं हमारे माल खर्च होते, और अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते। और जिसका हम नशीन और साथी शैतान हो वो बदतरीन साथी है। भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ने जो इन्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते। अल्लाह ताला इन्हें खूब जानने वाला है। अंदाज कितना खूबसूरत हो गया। अल्लाह ताला ऐसे कह रहे क्या हो गया फकैफा। बहुत दफा आप देखेंगे ये जुमला बागे कुरान पाक में, यानी अल्लाह ताला शऊर को बेदार करते हैं, सोल सर्चिंग स्टाइल है कह लीजिए। बेशक अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो इसे दुगनी कर देता है, और खास अपने पास से बड़ा सवाब देता है। अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। और आगे अब फिर दोबारा शहादतें, हक की बातें और नबी के अपनी उम्मत के साथ प्यार और मोहब्बत क्या था उसका तस्करा है। फकई फैजा जी न मिन कुल्ली उम्मतिम भी शहीदिम वजी ना बिकाला उलाई अला उलाई शहीदा। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। जिस रोज काफिर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें जमीन के साथ हमवार कर दिया जाता और अल्लाह ताला से कोई बात छुपा ना सकेंगे। हम उस नबी की उम्मत हैं जो रात को भी हमारे लिए खड़ा हुआ दुआओं के लिए रो रो के। ये आयत अल्लाह के नबी पढ़ पढ़ के रात भर होते रहे और दिन में भी खड़ा रहा तबलीग के लिए और इस पैगाम को इंसानियत तक देने के लिए। अल्लाह ताला आज मुझे आपको भी इसी की तौफीक अता फरमाए कि हम इस दर्द को महसूस करें। इस दौरे कुरान के बाद तो उठ खड़े हों, घरानों के घराने निकलेंगे। एक बात जो हर साल कहती हूँ, शायद इस साल उसका बेहतरीन मौका है। आप देखिए कि अकेली औरतें दीन सीखेंगी तो भी दीन आम नहीं होगा, अकेले मर्द भी दीन सीखेंगे तो काम नहीं होगा, अकेले बच्चे भी दीन सीखेंगे तो काम नहीं होगा। पहला मरहला तय कब होगा उम्मत मुस्लिमा की बहाली का और उनकी इज्जत और दुनिया में कामयाबी का, जब ये सब तीनों के तीनों मिल के इल्म सीखेंगे। फिर इसके बाद अकेली औरतें दीन के लिए काम करें और वो दीन को फैलाने के लिए वॉलंटियर करें, जिम्मेदारियां लें, तो भी झगड़े ही होंगे निरे, और क्या होगा। मर्द अकेले करेंगे तो बीवियां डांटेंगी ये आप किस तबलीग में लग गए, और बच्चे होंगे तो लोग कहेंगे हाय हाय बिगड़ गया, हमने बाहर भेजा था पढ़ने लिखने के लिए, ये तो मौलवी बन के आया तो ये काम खानदानों के करने का है। जैसे हजरत इब्राहिम ने बीवी बच्चे को साथ लिया था, जैसे मूसा अपनी बीवी बच्चे को साथ लेकर मदियन से मिस्र आते हैं, और जो काम अल्लाह के नबी ने अपने अमल से करके दिखाया। तो ये लॉकडाउन के दिन है, इससे फायदा उठा लीजिए। एक सोच हो जाएगी, यक रुखा होगा आपका काम, अंडरस्टैंडिंग होगी, सब शौहर बीवी बच्चे एक ही धुन में। और दुआ देती हूँ सबको कि अल्लाह इन घरानों को अपने दीन के लिए चुन ले। जो कुर्बानियां इब्राहिम ने दी उनसे अल्लाह ने ली, अल्लाह तआला हमसे भी खानदानी तौर पर ले। अपने घर को पुख्ता कीजिए, अभी तो आगे जाके खानदान से भी बहुत कुछ मनवाना है। कम अज कम शौहर बीवी बच्चे जो दिन रात का बेशतर हिस्सा साथ गुजारते हैं उनकी तो एक ही जैसी एक्टिविटीज हों। ये कोई घर है कि जैसे लगे इंटरनेट कैफे, एक अपने कमरे में नेट से खेल रहा है, दूसरा तीसरे तीसरे में, ये घर नहीं होते। तो इन चीजों का लिमिटेड इस्तेमाल रखिए इन लॉकडाउन के दिनों में, वरना नजर भी कमजोर होगी और फिर फायदा ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा वक्त साथ रहें, किचन में तो सब साथ है, अगर खा रहे हैं तो सब साथ है, सफाई हो रही है चलो तुम वैक्यूम करो मैं ये करता हूँ, तुम ये कर लो मैं ये करता हूँ, मिल के घर को घर बनाइए। होम स्वीट होम सिर्फ मुसलमान का होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी गाइडलाइन है हमारे पास। इसके बाद नमाज से मुतल्लिक कुछ अहकामात और सफर और हजर और इसी तरह से वुजू और तयम्मुम के मसाइल हैं। तर्जमे पे गौर रखिएगा ताकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सला तवान तुम सुकारा। और ये आयत जो है ये हुरमत शराब की दूसरी आयत है, तदरीजी मराहल है, क्योंकि शराब पानी की तरह पीते थे, घुट्टी में पड़ी हुई थी, एकदम छोड़ने को कहते एक तरफ तो उनकी तबीयतें ना मानती, उनकी सेहत ना मानती, तीसरी तरफ उनका बिजनेस डूब जाता। इस्लाम ये नहीं कहता कि एकदम ऐसा कोई स्लम्प आए कि फिर सब गिर जाए। तो इसमें थोड़ा सा मजीद करीब करके समझा दिया और साथ ही साथ पैगाम भी दे दिया कि नमाजों में तवज्जो दो। ऐमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब न जाओ, जब तक कि अपनी बात को समझने न लगो, और जनाबत की हालत में जब तक कि गुसल न कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हों तो और बात है, अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई कजाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और तुम्हें पानी न मिले, तो पाक मट्टी का कसद करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लो, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शने वाला है। तो ऐसी नमाजें पढ़िए कि जिसमें तर्जमा समझ आ रहा हो। नशे में नमाज क्यों मना थी? इसीलिए ना कि समझ नहीं आता क्या किया। तो क्या आज आपको मुझे नमाज समझ आती है? अल्लाह अकबर। क्या तुमने नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। फितना नोट कीजिए, औरत की आजादी का फितना इसी तरफ से आया। शरीयत के मुकाबले में शहवत को मानने वालों के अहदाफ क्या हैं? व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस पीपल? पहली बात है इस्लामी खानदानी निज़ाम को तोड़ना, और इसमें वेस्ट काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। आज लोगों की फिक्र यह है कि उम्मत मुस्लिमा के घर तोड़ो, क्योंकि एज अ उम्मत तो ये नहीं टूट पा रहे। और आप देखिए जितनी ये कमी बेशियां हैं और इक्वलिटी और इस तरह के नारे हैं, उतना खानदान टूट रहा है। और यकीन कीजिए कि वेस्ट के पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है और साइंस भी है और सहूलियात है, लेकिन खानदान नहीं है और ये खानदान से टूट रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मजबूत खानदान इनको बनाकर दिखाने वाला बनाए। दूसरा क्या होता है? इस्लामी शरीयत का खात्मा होता है। कौन माने इतनी मुश्किल शरीयत जिसमें नमाज रोजे भी और निगाहों तक की हिफाजत है, उसके मुकाबले में आप शहवत को मानिए। इसी तरह मुसलमानों को अपने रंग में रंगना इनका टारगेट है। अल्लाह माफ करे, सिबगत अल्लाह का रंग तो कहीं पीछे रह गया, सब्ज या काले या सफेद रंग में ढल गया और रंग हम पे चढ़ गया गैरों का। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। और शहवत की पैरवी करके इंसान को जानवर बनाने की कोशिश की जा रही है। जानवरों वाली हरकतें छोड़िए, जानवर भी वो नहीं करते जो आज इंसान से करवाया जा रहा है। ये लस्ट और शहवत को मानने वालों का गोल पूरा हो रहा है। कोई जानवर होमोसेक्सुअल नहीं होता, आज इंसान को बना दिया। और इसी तरह की सोन बातें, जानवर अपनी बीवियों और अपने कपल के बाद किसी दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। शायद आपको ये बात है मालूम के नहीं, वो भी अगर एक दफा किसी से ताल्लुक जोड़ ले तो बस उन्हीं से, आज शादी कहीं और ताल्लुक कहीं। ये शहवत परस्तों का खेल है, और अल्लाह ताला इन फितनों से हमारी नस्लों को बचाए। फितनों की वजूहात क्या होती हैं फिर दोहरा लेते हैं, और ख़ास तौर पे इस फितने की जिसको जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। पहली बात, ख्वाहिशात की पैरवी। और इस पूरे पारे में अभी तक कितनी दफा लफ्ज़ ख्वाहिश बोला है मैंने, इसको भी नोट कीजिएगा। आज भी हम ख्वाहिश परस्त हो गए तो ये फितने आए। जिन्होंने आज भी ख्वाहिशों पे पांव रखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बचे में, और ऐसे लोग आज के दौर में भी बहुत सारे हैं। कुरान सुन्नत से दूरी वजह है, आप इसका जवाब खुद दीजिए खुद को, मैं तो अपने आप को दे सकती हूँ। फिर मगरबी तहजीब से मुतासिर होने वाले इस फितने में गए, ये तो ऐसा जवाब है जिसके ऊपर एक कमेंट की भी जरूरत नहीं है, रोजे रोशन की तरह वाजे। फिर दुश्मनान इस्लाम की साजिशें हैं, फिर निफाक है, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसी तरह महातुल मोमिनीन और सहाबिया के किरदार और सीरत से नावाकफियत है। कौन सी आखिरी किताब आपने खुद पढ़ी या अपने बच्चों को पढ़ाई? आज का दौर, ये लॉकडाउन में कोशिश कीजिए कोई ऐसी बुक अपने बच्चों को उनकी एज के मुताबिक चूज करके दीजिए जो पढ़े, जो सीरत की भी हो सकती है, जो सहाबा के बारे में हो सकती है। बेटियों को सहाबियात के बारे में बुक्स असाइन कीजिए और बच्चों को बच्चों से मुतल्लिक के दौरे नबवी के बच्चे कैसे थे, तो इंशाल्लाह वो रोल मॉडल दिखेंगे। कम से कम बाहर के रोल मॉडल से अंदर बचे हुए हैं तो उनको भी पता चलेगा कि मुस्लिम्स के पास भी कोई रोल मॉडल्स मौजूद हैं। फिर इसी तरह जाहिलाना गैर शरई सोच है। फितना दजालियत का आगाज हो चुका है, हर चीज़ को उसी से जोड़ा जाता है आज के दौर में तो अमूमन। इसी तरह मगरबी औरत को अपना आइडियल बना लिया आज की मुसलमान औरत ने भी। और फिर सबसे पीछे जो मास्टर प्लान है वो शैतान के बहकावे हैं। और ये बात जो बोली गई इसकी दलील ले लीजिए, सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2680। टॉपिक है दज्जाल के फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें होंगी। और इस रिवायत में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बेहतरीन जमीन मदीने की है। जब दज्जाल निकलेगा तो इसके हर रास्ते पर फरिश्ता बैठा होगा और दज्जाल इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। जब सूरत हाल इस तरह होगी तो मदीना 3 मरतबा अपने रहने वालों को हिलाएगा, यानी जलजला आएगा बहुत बड़ा क्यामत से पहले और दज्जाल के आने के दौरान के वक्त में। जब जलजला आएगा तो कोई मुनाफिक और मुनाफिका इसमें बाकी नहीं रहेगा, वो मदीने से बाहर निकल जाएंगे, वहां से अक्सर निकलने वाली औरतें होंगी। अल्लाह अकबर। हदीस तो आगे भी है लेकिन जरा सा गौर तो कीजिए, क्या आपको नहीं लग रहा कि यूनिवर्सल ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है इन सारे कामों के लिए? अल्लाह ताला ने एक छोटा सा झटका देके हमें यकीन दिला दिया कि ये ना सोचना कि ये सारी दुनिया में कैसे होगा। अगर कोरोना का फितना सारी दुनिया में आ सकता है, लॉकअप सारी दुनिया के लोग हो सकते हैं, तो ये जो बातें बताई गई हैं ये क्यों नहीं होंगी? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई फितना क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ होगा और कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी उम्मत को इससे डराया न हो। मैं तुम्हें ऐसी निशानी बता रहा हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। फिर अपना हाथ अपनी आंख पर रखा, फिर फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला काना नहीं, मुराद है कि दज्जाल की एक आंख होगी। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी इस फितने से बचाए। अभी खौफ लग गया कि आने वाले दौर में जो फितने होंगे उसमें क्या कुछ ना होगा। तो अब जब इतना घबराहट तारी होती है तो एकदम फिर एक मुसलमान माँ बाप तो परेशान होते ही है ना, होना भी चाहिए जिंदगी में। अपनी ये कुछ हो गया तो बाद में न जाने क्या होगा। तो फिर अल्लाह ताला आपको मुझे तसल्ली भी तो दिला देते हैं कि ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, इसलिए कि वकफा बिल्लाही वलीयम वकफा बिल्लाही नसीरा वल्लाहु आलम बियादाइकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफी है और अल्लाह ताला का मददगार होना बस है। यानी तुम अपने बच्चों की अच्छी अच्छी तरबियत करो, जो कोशिश कर सकते हो करो, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूंगा इंशाल्लाह ताला। बस आज इस दौर में ही अपने घरों को लेकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पे चलिए, इंशाल्लाह हमारी नस्लों को कुछ नहीं होगा बेज़निल्लाह। कुछ चीज़ें अब आगे मुस्तकिल आएंगी जो सूरह बकरा में भी आपने पढ़ी, उसी तरह का अंदाज है कि मदीना में जो लोग अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द थे वो यहूद थे, जिसको बनी इसराइल कहा गया, तो वो बहुत ही इस तरह के शोशे छोड़ते थे और स्कैंडल्स बनाते थे और आपकी महफिलों का हुसन खराब करना चाहते थे, डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते थे। इसी तनाजर में अब अगली काफ़ी आयतों को सुनिएगा। बस यहूद कलेमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और ना फरमानी की। दुआ कीजिए कि हम ये जुमला ना बोले। और सुन इसके बगैर के तू सुना जाए, यानी तेरी शोहरत ना हो, लोग तुझे ना सुने, ये मुराद है, बद्दुआ देते थे। और तीसरा और हमारी रियायत कर, ये जो पीछे जिक्र हो चुका है पहले पारे में, यानी 3 किस्म की तौहीन बनी इसराइल के लोग अल्लाह के नबी की महफिलों में बैठ के करते थे। लेकिन क्या सब्र और क्या शऊर था आपका, आपके साथियों का, कोई फितना इतना बड़ा ना, क्योंकि जो कहते हो कह लो, और कहते कितनी होशियारी से थे, लेकिन इस कहने में अपनी जुबान को पेच देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की, आप सुनिए हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर और नहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कुफर से इन्हें लानत की, बस अब ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। तो क्या है इस आयत का टॉपिक? यहूद की बुराइयों में से एक बुराई, समेना वासईना। आज का मुसलमान ये जुमला तो कम ही बोलता होगा, इससे मिलता जुलता एक जुमला उसकी जुबान से निकल ही जाता है, और वो क्या है, ना इल्म लो ना अमल करो। और ये जो इल्म ले रहे हैं ना और अमल नहीं कर रहे, ये ज्यादा गुनाहगार है। नतीजा क्या निकला, इल्म बहुत है लेकिन अमल नहीं है। कितनी क्लासें आपने ज्वाइन की हुई है, जरा खुद से तो पूछिए। कितनी जगह आपने अपने आप को पेश किया हुआ, जरा उसको तो पूछिए। तो फिर शीशे में खड़े होकर खुद से भी पूछिएगा कि क्या मेरा ये सब कुछ सिर्फ दूसरों के लिए, ये उनको दिखाने के लिए? मेरा दिल दिमाग कितना मती हुआ, मैं कितनी फोकस्ड हूँ, मैं कितनी डिटर्मिन हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती हूँ? ये सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल आपको बताएगा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। एक दर के ऊपर बैठे रहना तो बिल आखिर दरवाजा खुल ही जाता है। अहले किताब, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور ہے اللہ کا کام کیا گیا. یعنی تم کرو نہ کرو اللہ اپنے کام کر لیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بڑے فتنے یعنی فتنہ شرک سے بچا کے رکھے. کیوں شرک ناقابل معافی ہے؟ آیت 48 میں اپنا جائزہ لیتے ہیں. اللہ کی ذات میں شرک ہے, کیا میں تو نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہوتا ہے, کیا میں اس کی صفات دوسروں میں تو نہیں ڈھونڈتی؟ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک یعنی عبادت محبت اور اطاعت کسی اور کے لیے بھی کرنا, کیا میں اس شرک کی مرتکب تو نہیں دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ؟ تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر سے ڈھکے چھپے سارے قسم کے شرک ختم کر دے. خود پسند لوگوں کی بات, کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ یعنی اچھے لوگوں کی تعریف دوسرے کرتے ہیں, اور جو زیادہ اچھے نہیں ہوتے وہ اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں, اپنے کندھے خود تھپتھپاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے, کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں, اور یہ حرکت یعنی گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. خود ساختہ وعدے اور خود ساختہ دعوے, کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے یعنی ادھورا علم, جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی, اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار تو نہ پائے گا. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. یعنی اللہ ہی کا حوصلہ جو سارے انسانوں کو پال رہا ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے خزانے تو لوگ اس کو بھی جمع کر لیتے اور خرچ نہ کرتے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا, بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی, اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ سب عطا فرما. پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے, اور جہنم کا جلانا کافی ہے. اگلی آیت کو ذرا شعور سے سنیے اور دعا کیجیے کہ اللہم لا تجعلنا منہم. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی, ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. کھالوں کے جلنے اور گلنے کا ذکر ہے, یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ قرآن پاک پر ایمان نہ لانے والوں کا حال کیا جہنم ہے ان کے لیے؟ کھالیں بدلی جائیں گی. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کے بدلنے کا یہ عمل ایک دن میں 70-70 بار بھی ہوگا یا اس سے بھی زائد. مسلسل عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو. قرآن کی بات نہ ماننے والے شریعت کے منکر, اور شریعت کے مقابلے میں شہوت پرستی کو ترجیح دینے والے. اللہ نہ کرے دنیا میں کبھی بھاپ بھی پڑ جائے چائے بناتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ جلنے کا سارا درد جو ہے نا وہ اسکن کو ہوتا ہے, ایپیڈرمن. آپ دیکھیے اوپر کی جلے گی تو دوسری تیار ہو جائے گی اور اندر سے اندر سے اندر سے نکلتی جائیں گی. اللہ دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے. کون بچیں گے اس آگ سے اور کن کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے, ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی. نوٹ کیجیے گا, عورت کی آزادیوں کے فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گی وہ بیویاں, پاکیزہ ہوں گی, خاص طور پہ اپنے شوہروں کی دل کی خوشی کا سامان ہوں گی. اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی محروم نہ کرنا. کرو کیا؟ امانتوں کی پاسداری, ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاؤ. جس کام پہ اللہ نے تمہیں لگا دیا اس کو پوری ایفرٹ کے ساتھ کر ڈالو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہو جائے گا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت انہیں پہنچاؤ. سب سے بڑی امانت آپ کو مجھے اللہ نے کیا دی ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ, شہادت حق کا کام. دوسرا پارا یاد کر لے. یہ دین دیجیے. اسی طرح علم کی امانت اللہ نے دی, اس کو سینوں میں نہ رکھیں. جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کروا سکے حق کے ساتھ دیجیے. और जब लोगों का फैसला करो तो अदलो इंसाफ से फैसला करो, यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है और देखता है। देखिए हर जिम्मेदारी एक अमानत है। हम अमानतों के साथ कुछ जाती जाहरी चीजों पे आते हैं तो आप देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम पे ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे करना है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का हक अदा करना है, फिर खानदान का हक, साहिबे मामला का हक, जिधर जिस मामले में अल्लाह आपको डाल दे पूरी कोशिश करके उसका हक अदा करें। लव योर जॉब, जिम्मेदारियों से प्यार कीजिए, बोझ ना समझिए। अगर आपको उसके तकाजों के लिए कहीं मीटिंग्स में कहीं ऐसी जगहों पे जाना पड़े, बुलाया जाए, खुशी से आइए, क्योंकि हर एक को नहीं बुलाया जाता। और आमतौर पे आप देखिए कि ये सारा इंसाफ का मामला किसके साथ है? काजी के साथ। तो हदीस सुन लीजिए इब्ने माजा की रिवायत 2312 अब्दुल्ला बिन अबी औफा से हम तक पहुंची, अल्लाह की मदद काजी यानी फैसला करने वाले के साथ इस वक्त तक होती है जब तक वो जुल्म न करे। जब वो जुल्म करता है तो अल्लाह ताला इसको इसके नफ्स के हवाले कर देता है। दुआ कीजिए अल्लाह में किसी मामले में, इवन अपने दो बच्चों के बीच में मामला करते हुए, हमारे नफ्स के हवाले ना करे कि जो लाडला है उसकी हिमायत करे और वो बेचारा जो मजलूम है उसको हम डांटते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमा बरदारी करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तुम में से इख्तियार वालों की। ये है वो आयत जिस पे एक ईमान वाले को आज गौर करना है। ये तीन इताअतें जमा कर लीजिए, अल्लाह की रहमत से उम्मत मुस्लिमात दुनिया में उभर जाएगी। और इस पे हमने रिसेंटली बहुत बात की, एक पूरा लेक्चर भी था, शायद मुझे उसका नाम गलत याद हो, कि जिसमें इताअत किस तरह से और क्या हालात से होगी, क्योंकि एक तो अल्लाह की बात माननी है, एक रसूल की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल शायद उसका नाम था, प्लस उलिल अमर, डिसिप्लिन बनो, ऑर्गेनाइज्ड बनो। और अगर कभी किसी जगह साथ वालों से कुछ इख्तलाफ हो तो क्या करो, फिर अगर किसी चीज पर इख्तलाफ करो तो इसे लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और बाएतबारे इंजाम के बहुत अच्छा है। तो क्या बताया, हर मसले और फितने का हल, नंबर एक अल्लाह की इताअत कीजिए, फिर रसूल की इताअत में है, फिर इख्तियार वालों की इताअत यानी मैनेजमेंट, इंतजामिया जिसको बोलते हैं, जो आपको संभाल रहे हैं, जो कहते हैं उसको मानिए, और आखिरी चीज के अगर कहीं इख्तलाफ हो तो कुरान और हदीस की तरफ रुजू कीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे मामले दुरुस्त होंगे। या आपने इन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और आपसे पहले उतारा गया इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि शैतान का इनकार करें, शैतान तो ये चाहता है कि बहका कर दूर डाल दे। सोचिए शैतान आपको हमेशा सिराते मुस्तकीम से दूर, बल्कि बहुत ही दूर करना चाहता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से उसकी बात को टालती हैं। इनसे जब कभी कहा जाए कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा कलाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके रहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या क्या बातें हैं इन आयतों में जिस पे वक्त लगाने की जरूरत है। बस ये दुआ कीजिए कि रमजान के बाद अल्लाह ताला हमें इन आयात को बड़े गौर से और तफसील के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इनसे जब कभी कहा जाए कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा कलाम की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, क्या ये जुमला कभी मुझसे भी किसी ने कहा, आपसे भी कहा? हर वक्त कहा जाता है। तो खुशकिस्मत है वो जो इस पे लब्बैक कहे, लेकिन इसके बरक्स तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके जाते हैं। यानी मुनाफिक को सबसे ज्यादा मुश्किल रसूल की इत्तबा और उसकी इताअत होती है। फिर क्या बात है कि जब इन पर इनके करतूत के बायस कोई मुसीबत आ जाती है, फिर ये आपके पास आकर अल्लाह की कस्में खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मलाप का ही था। ये वो लोग हैं, इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्म पोशी कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहिए और इन्हें वो बात कहिए जो इनके दिलों में घर करने वाली हो। इसको जरूर नोट कीजिए, खास तौर पे जब घर वालों को नसीहत करें, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, माँ बाप बच्चों को समझाएं, तो बात दिल में उतरने वाली कीजिए। बस दफा बात सच होती है, अंदाज अच्छा नहीं होता, और दिल में जो उतरेगी ना वो ही सामने आएगी। हम बस दफा अपने जोश में आकर ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारी सही बात भी कोई मानना नहीं चाहेगा। तो कौलन बलीगा, हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी फरमाबरदारी की जाए, اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. اللہ کے نبی کو کتنا پیار تھا اپنی امت سے. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کی توفیق دے. اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے. یعنی نعتوں میں محبت کے دعوے کرنا اور بات ہے, جھوم جھوم کر نبی کی محبت اور ان کے عشق کی باتیں کرنا اور بات ہے, اور عملی میدان میں عموماً لوگ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہو, تو تب تو انہیں اپنے پاس سے ہم بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں. اب اگلی آیت کو ذری توجہ سے سنیے گا. صراط الذین انعمت علیہم کی دعا ہم ہر روز مانگتے ہیں, صبح و شام مانگتے ہیں. اس کا جواب اس آیت میں ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ, یہ بہترین رفیق ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 6168. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, آپ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. کیونکہ جب یہ آیت اتری اس سے پہلے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے خیال آ گیا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہوگا, تو میں تو کسی عام درجے کی جنت میں ہوں گا, تو وہاں میں جب پریشان ہوں گا اور میرا دل آپ سے اداس ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ تو خاموش رہے لیکن آسمان سے جواب آ گیا اور ایک لمبی لسٹ دے دی. اگر آپ دیکھیں تو یہ چار گروہ آپ کے میرے بھی رول ماڈل ہونے چاہیے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اچھی کمپنی مل گئی, ان کا ساتھ مل گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام وہ ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں ہوگا. میں ایک مثال دیتی ہوں کہ دنیا میں ایک بہت فیمس شخص ہے, کوئی عالم ہے یا کوئی دنیا میں بہت پڑھا لکھا شخص ہے, کوئی شہرت رکھتا ہے, تو اب لوگ اس کے ساتھ کب ہوتے ہیں؟ یعنی اس کے ساتھ آنا جانا ہو جائے, اس کا فون نمبر مل جائے, وہ آپ کی محفلوں میں آنے لگ جائے, اٹھنا بیٹھنا مل جائے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو لوگ واقعی اطیع اللہ اور اطیع رسول کر لیں گے پھر ان کو نبیوں کے گھر میں آنے کی اجازت مل جائے گی, صالحین کے, شہداء کے, وہ اپنی دعوتوں میں ان کو بلا لیں گے. ذرا امیجن تو کیجئے, ابو بکر صدیق کے گھر میں ایک دعوت ہے جنت میں اور آپ کی طرف نام آ گیا کہ آؤ صدیقین میں شامل ہو جاؤ. تھوڑی سی محنت ہے دنیا کی, اور پتہ نہیں زندگی بھی اب کتنی ہے ہماری. تو کوشش کیجئے کہ نبی تو ہم نہیں بن سکتے, گول بنائیے صدیق بننے کا, سچے سچائیوں والے. وہ اگر مس ہو بھی گیا اس سے دوسرا درجہ جو اس سے ذرا ہلکا درجہ ہے اور وہ ہے شہید کا. دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں دے دیجئے اور جان چلی جائے گی تو شہید کہلا لیں گے. اس پہ آ جائیے گا, ہو سکتا ہے مصعب بن عمیر کے گھر میں دعوت ہو اور آپ کو کال آ جائے, انویٹیشن آئے, کیا یہ آئیے آپ چونکہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کی بڑی بات کرتے تھے تو آج میں ہوں تو شہید لیکن میں آپ کو اپنے گھر دعوت میں بلاتا ہوں. اور اسی طرح صالحین کی لسٹ میں تو ائمہ کرام اور صحابہ کرام اور لمبی لسٹ آج تک کے بھی نیک لوگ, قیامت تک جو نیک لوگ آتے رہیں گے وہ جنت میں آپ کو دعوتوں میں بلائیں, کھانوں پہ بلائیں, کیا آپ کی شان ہوگی. اے اللہ ہمیں ان کی مائیت عطا فرما, کام تو ہم وہ نہیں کر پا رہے لیکن اللہ ان کی محبت دے دے اور ان کا قرب دے دے. اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کیجئے, اور جتنا ایسے لوگوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے جو صالح ہوں اور صدیقیت کے مقام پہ ہوں اتنا انسان کے دل میں نیک بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, تو صحبت صالحین جنت میں لے جائے گی. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کیسے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت لے لو, شاید اللہ ان کے دل میں جھانکے اور وہاں تمہاری محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کہے جاؤ پھر اس کو بھی بلا لو. امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم جنت میں جاؤ اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو میرے بارے میں پوچھنا. تو دیکھیے اللہ جنتیوں کو ہر چیز دے گا نا ان کی پسند کی, تو ان کے پیاروں کو اللہ ان سے دور کیسے کرے گا؟ یہ نہیں کرنا کہ پلو پکڑ کر آپ کام چھوڑ دیں, ظاہری اطاعت بھی کیجئے، باطنی بھی کیجئے، کام بھی کریں اور دل کی خوشی سے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطیع اللہ اور اطیع رسول پہ عمل کرنے والا بنا دے. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا. اس کے بعد دوبارہ انسٹرکشنز مسلمانوں کو، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. نوٹ کیجئے، مومن سب کھپا دینے کو کامیابی سمجھتا ہے، منافق بچا لینے کو کافی سمجھتا ہے. مومن مشکل میں کام آتا ہے، منافق مشکل میں جان چھڑاتا ہے. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کے گویا تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. منافق کی نظر کامیابیوں پہ ہے، کشتی تری تو وہ ترے گا، نہ تری تو اتر جائے گا. مومن کی نظر حق پہ ہوتی ہے، حق ہے ڈوبے تو میں ڈوبوں گا ساتھ ہی، ترا تو میں بھی تروں گا. اللہ ہمیں حق شناس بنائے، کامیابیوں کے پیچھے نہ بھاگیں. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بڑا ثواب عنایت کریں گے. لفظ جہاد بولنا بھی آج کے دور میں ایک بڑا فتنہ بن گیا. یاد رکھیے جہاد کے 7 درجے ہیں، جس میں سب سے ادنا نفس سے جہاد ہے جو قریب کا ہے، اور سب سے اوپر قتال فی سبیل اللہ. تو آپ کبھی بھی اپولوجیٹک نہ ہوا کریں، اس موضوع پہ بات ہو تو بالکل کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں اسلام تو ایسے کہتا اور اسلام تو ویسے کہتا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں کر کے اللہ کے راستے کے مجاہد بنے، پھر بڑے مرحلے زندگی میں آئیں گے. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننے ننے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ یہ کل بھی تھا سوال اور آج بھی ہے، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مان لو شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے. اللہ ہمیں تو اپنے راہی بنا، شیطان کے چیلے نہ بنا. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو. اس کو نوٹ کیجئے، لوگوں کا ڈر اطاعت کا شوق ختم کر دیتا ہے. لوگوں کے ڈر سے ہی تو بہت سارے کام نہیں کرتے ہم، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور کہنے لگے، ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ یعنی عمل کے وقت پہ عذر بہانے. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ کیا جائے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، یعنی گھر کے اندر بھی ملک الموت آ سکتا ہے. یہ نہ سوچے کہ آئسولیٹ ہو کر ہم موت سے بچ گئے، ملک الموت تو سینما گھر میں بھی آ سکتا ہے، اور مالز میں بھی آ سکتا ہے، اور مسجد میں بھی آ سکتا ہے. تو کرو کیا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اس کا یقین کرو. گو تم مضبوط قلوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے. لیڈرشپ پہ اعتراض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے. انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے. بات تو یہ ہے کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. اللہ ہمیں اس پیغام میں شامل کر دے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. محبت کا انداز ہے اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کی. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے या इसने कही है इसके खिलाफ रातों को मशवरा करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफी कारसाज है। यानी महफिलों से उठकर जो बातें करते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ होती हैं जो महफिल में हो रही थी। निफाक यही है, दोगलापन, दो कश्तियों के सवार। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अफला या तदब्बरून अल कुरान। अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें भी कुछ इख्तलाफ पाते। कितनी प्यारी बात है। आप देखिए, दो लफ्ज आए हैं कुरान में, एक है तदब्बर और एक है यदब्बर। जब यतदब्बर हो तो उससे मुराद होता है पूरे कुरान पर गौर करना, जैसे यहाँ है। यानी क्या इन्होंने पूरे कुरान पर गौर नहीं किया? और कभी यदब्बरून आए, सूरत स्वात 29 में आप देख सकते हैं, तो वहां किसी खास आयत में या सूरत पे गौर करना होता है। तब आप पूछिए, क्या मैंने यह तदब्बर किया या फिर अब यह तदब्बर के दौर पे पहुंच गई? अब सवाल है कि ये क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान पढ़ने के और बड़े अंदाज हैं। कुरान खानी भी है, इसाले सवाब भी है, लेकिन तदब्बरुल कुरान क्या है? तो नोट कीजिएगा कि तदब्बर में दो चीजें होती हैं, तज़क्कुर और तदब्बर। तज़क्कुर के नसीहत लीजिए, ये लफ्जी तर्जमा और तशरी पढ़ने से हासिल हो जाता है, लेकिन तदब्बुर के लिए जुबान की गहराइयों में खोना पड़ता है। जैसे अभी आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, ये काम इल्म वालों का है। जितना ज्यादा इसमें घुसते जाएंगे, कुरान पे तदब्बुर होता ही जाएगा, और अल्लाह हमें अपनी जिंदगी के मसले मसाइल से उठाकर ऊपर इस पे तदब्बुर करे। आज लोग कोरोना वायरस पे तदब्बुर कर करके थक गए, तो अब लॉकडाउन पे तदब्बुर कर रहे हैं। छोड़िए खबरों को, छोड़िए ऐसे शोज को जो आपका वक्त भी लें, आपकी एनर्जी भी लें और आपको खौफजदा करें। इतना वक्त कुरान के लिए लगाइए। क्या हम कुरान के लिए इतना वक्त बैठ सकते हैं जितना हम दूसरी चीज़ों के लिए बैठते हैं? और ये तदब्बुर कब होगा? जब हमें समझ आएगा। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और जब इल्म नहीं है, इधर उधर की बातें हैं, तो क्या होता है? जहां इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने इसे मशहूर कर दिया। हाय, वहां वो मर गए, ये चले गए। क्या सोशल मीडिया पे क्या से आज के दौर में भी आप देख सकते हैं कि दुनिया कितनी परेशान है। तो याद रखिए, सुनी सुनाई बातों पे एतबार ना कीजिए, क्योंकि उन्होंने इसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते, तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, तो चंद लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पैरोकार हो जाते। अल्लाह ताला अपना फजल और रहमत हम पे रखे। क्या पता चला कि हर मैसेज को आंखें बंद करके फॉरवर्ड ना कीजिए, वो उस शख्स को पहले 10 ग्रुप्स में से मिल चुका होगा जिसमें आप और वो इकट्ठे हैं, या दूसरों ने इसको डाला हुआ है। तो आज के दौर का सोर्स ऑफ नॉलेज सोशल मीडिया बन गया, तो इल्म की कदर भी बहुत कम हो गई हमारी नजरों में। तू अल्लाह की राह में जिहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है और सजा देने में भी सख्त है। होगा कौन उधर? बड़ी प्यारी आयत है, नोट कीजिएगा, आयत 85। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे, इसे भी इसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और बुराई और बदी की सिफारिश करे, इसके लिए भी इसमें एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अच्छी बात सिखा जाइए दुनिया में किसी को, आपके मरने के बाद कब्र में ठंडी हवा बन के पहुंचेगी। और सबसे अच्छा सदका जारिया औलाद को सिखाना और स्टूडेंट्स को सिखाना है। जो नेकी भी आएगी वो आप ही के नाम पर पड़ेगी। याद रखिए कि नेकियों का रिपल इफेक्ट होता है। अल्लाह ताला आपकी मेरी नेकियों को बढ़ाने वाला बनाए, कम करने वाला ना बनाए। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो। ये नहीं कि सलाम के जवाब में मुंह बना, ओके, हाथ से इशारा। आज शाने बेनियाजी से लोग जवाब भी नहीं देते कभी कभी। अच्छा जवाब दीजिए, लफ्ज़ भी अच्छे बोलिए, जज्बात भी हो, अगले को खुशी हो, वो शर्मिंदा ना हो जाए आपको सलाम करके। और ख़ास तौर पे जब सलाम करने वाली बेचारी मासी हो या आपसे ज़रा नीचे का कोई शख्स हो, तो क्या होगा? तो सलाम सलाम सलाम। हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को आम करना है। चलो, अच्छा नहीं दे सकते ना, तो या इन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बिला शुबा अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। कौन सा अल्लाह? अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तुम सबको यकीनन क्यामत के दिन इकट्ठा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा? फिक्र आखरत अल्लाह हमें लगा दे। फमा लकुम, तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकों में दो गिरोह हो रहे हो? इन्हें तो इनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने ओंधा कर दिया। नोट कीजिए, बंदे की बात ऐसी बुरी आदतें होती हैं कि जिसकी वजह से मत मारी जाती है, अक्ल उल्टी हो जाती है, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें समझ आ जाएंगी लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ नहीं आएगा। और कभी इंसान किसी के आगे झुकेगा और कभी किसी के आगे। अब क्या तुम ये मंसूबे बना रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो? जिसे अल्लाह राह भुला दे तो हरगिज तो उसके लिए कोई राह ना पाएगा। तो मुनाफिक की भी मत मारी जाती है। इनकी कुछ चाहतों का जिक्र है। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी इनकी तरह कुफर करने लगो, फिर सब यकसां हो जाओ, यानी फिर कोई किसी पे उंगली ना उठा सके, सब एक ही जैसे हैं। याद रखे, मुनाफिक को नेकियां करने वाले, नेकियों की दावत देने वाले, उसके प्लान बनाने वाले बड़े बुरे लगते हैं। कहते हैं फिर काम करना पड़ेगा, चुप चुप, कोई देने की जरूरत नहीं आइडिया, ये भी शुरू हो जाएगा और वो भी शुरू होगा। तो आप हिस्सा ना डालिए, दुआ तो दे दीजिए, अल्लाह जिससे लेना चाहेगा काम ले लेगा। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन न छोड़े, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त न बनाओ, फिर अगर ये मुंह फेर ले तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहां भी हाथ लग जाए। खबरदार, इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार ना समझ बैठना, सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हो। ये सारी जो आयतें, ये मुसलमानों की खारजा पॉलिसी यानी फॉरन पॉलिसीज क्या होंगी किसी मुस्लिम स्टेट की, ये मुख्तलिफ केसेस हैं जो सिर्फ इस वक्त आपके मेरे लिए समझने से ज्यादा सुनने वाली बातें हैं। सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हो, जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल है और अपनी कौम से भी जंग करने में तंग दिल है, पीस मेकर, और अगर अल्लाह तला चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। इतने प्यारे कानून अल्लाह के सिवा कोई और दे नहीं सकता। हर एक को उसके शऊर और उसके जर्फ के मुताबिक डील करो, ये मुराद है इन आयतों से। तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिनकी बज़ाहर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लाए जाते हैं तो उन्दे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी ना करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जानिबदानी ना करें, यानी एक तरफ ना हो, तो अपने हाथ ना रोके, तो इन्हें पकड़ो और मार डालो जहां कहीं भी पाओ। यही वो हैं जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत अनायत फरमाई है, यानी दोस्त और दुश्मन का फर्क पहचानो। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना जेबा नहीं, मगर गलती से हो जाए तो और बात है। यानी यहाँ कत्ल की सजा देखिए कि इस्लाम कितना पीसफुल रिलीजन है कि किसी किस्म के कत्ल को बर्दाश्त नहीं करता, कहाँ सुसाइड और कहीं अपने आप को मारना या दूसरे को मारना। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला इरादा मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद कराना और मकतूल के अजीजों को खून बहा पहुंचाना, हाँ ये और बात है कि वो लोग बतौरे सदका मुआफ कर दें। और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो वो मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करानी लाजमी है। और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और इन मेहदों पे मान है, तो खून बहा लाजिम है जो इसके कुंबे वालों को पहुंचाया जाए। और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना भी जरूरी है, बस जो ना पाए इसके जिम्मे लगातार 2 महीने के रोजे हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए। अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। अब यहाँ कत्ल अमद की है, पहले बिला इरादा कत्ल की सजा थी, अब जानबूझ के जो कत्ल किसी को करे, अल्लाह करे ये बातें आम हो जाएं तो हमारे मुल्कों से भी ये कत्ल व गारत गरी खत्म हो जाए। जो कोई किसी मोमिन को कसदन यानी इरादे के साथ कत्ल कर डाले, इसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह ताला का गजब है, इसे अल्लाह ताला ने लानत की है और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। क्या पता चला कि मोमिन का कत्ल संगीन जुर्म है? आप देखिए कि आज के दौर में कत्ल जैसे फितने भी बहुत हैं। क्यों लोग कत्ल करते हैं? पहली बात है कि फिरका परस्ती की बुनियाद पे, बाज़ुकात गैरत के नाम पे, जायदादों के लेने देने के नाम पे, और ये अपने ही होते हैं, और मामूली तनाजे पर भी कत्ल होते हैं। तो इन आयतों को आम कीजिए ताकि लोग इस जुर्म को समझ सकें कि इसकी सजा क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब यहां से बिला तहकीक बातें आगे करने का फितना उस पे बात है। ऐमन वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम इसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं, यानी ऐसे ही फतवे ना दे दो कि फला मुसलमान नहीं और फला मुनाफिक है। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, बस तुम जरूर तहकीक और तफ्तीश कर लिया करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। तो पहले सोचो फिर बोलो, ये नहीं कि काम करके पछताओ। बस लोग जज्बातियत में गलत बातें करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और अब कुछ लोगों के मुख्तलिफ दर्जे, अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उजर के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत फजीलत दे रखी है। तो क्या दुआ करें कि हम बैठे ना रहें, काम करने वाले बने। कुछ लोगों ने शुक्र किया, बैठ गए बस, कुछ कहते हैं इसी में उठेंगे इंशाल्लाह। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है, अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी। और अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने जितने वादे किए हैं हमारे साथ पूरे कब होंगे? जब हम अल्लाह के रास्ते में उठेंगे। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मغلوب थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। हिजरत की बात आ गई, याद रखिए कि हिजरत और तन्हाई साथ है। आज मेरी आपकी हिजरत वो हिजरत नहीं है जो कल की थी, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको एक भी दारुस्सलाम नहीं दिखेगा। हाँ, आज कीजिए तो गुनाहों से हिजरत, हराम से हिजरत, नाफरमानियों से हिजरत। कुछ दिन तक तो लोग आपको छोड़ देंगे अलग से। आज आप रस्मों रिवाजों में शिरकत से हिजरत कीजिए तो आपके अपने खानदान के लोग ही आपको पीछे कर देंगे। तो क्या सीखा? आयत 90 से 97 में अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह की राह में निकलने की बहुत फजीलत है। किसी मोमिन का कसदन यानी इरादतन कत्ल करने वाले पर अल्लाह की लानत और गुनाहों से तौबा कबल इसके कि मौत आ जाए। जरूरत इस बात की कि हम मौत का इंतजार किए बगैर इस बाकी जिंदगी को नेकियों में लगा लें। अब सारे ऐसे नहीं, यानी पीछे बात हुई उनकी कि जो सिर्फ मजबूरियों के नाम पे फिर गलत जगहों पे बैठे रहे, गलत काम करते रहे। लेकिन कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं। कौन? मगर जो मर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चारेकार की ताकत और ना किसी रास्ते का इल्म। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ करने वाला है। देखिए, अल्लाह को पता है मैंने किस बंदे से कैसे मामला करना है। जो कोई अल्लाह की राह में वतन छोड़ेगा वो जमीन में बहुत सी क्याम की जगहें भी पाएगा। ये बात सहाबा को समझ आ गई थी, इसलिए घरों से दिल नहीं लगाया। उनकी जिंदगी का मकसद घर को कोठी और कोठी को बंगले में बदलना नहीं था। वो तो एक छोटा सा डेरा उठाकर चल पड़ते थे। कंधे पे सामान जो रखा, जहाँ बैठे वही घर है। आज भी इस दर्जे पे काम करने की जरूरत है उम्मते मुस्लिमा को, फिर इस पौधे पे इंशाल्लाह बहार आएगी और कुशादगी भी। और जो कि अपने घर से अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे साबित हो गया। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फिर नमाज की बात, जब तुम सफर पर जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, यकीनन कुफार खुले दुश्मन हैं। मैदान जंग में भी नमाज नहीं जमात की नमाज की फिक्र थी सहाबा को। अल्लाह हमें भी ये फिक्र लगा दे। तरीका देखिएगा सलातुल खौफ का, जब तुम इनमें हो और इनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके हैं तो ये हट कर तुम्हारे पीछे आ जाए, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहें। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो तुम पर वो अचानक धावा बोल दें। अपने सामान में अपनी औलाद को लिखिए, आज भी इधर आपने अपनी औलाद से आंखें बंद की, वो दूसरों के हाथों में तरने वाला बन जाएंगे। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में इस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं। जबकि तकलीफ हो या बवजह बारिश के या बवजह बीमार हो जाने के, और अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहो, यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचाए। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटे अल्लाह का जिक्र करो। नोट कीजिएगा, हम तो नमाज के बाद ऐसे जाए नमाज से उठते हैं कि अल्लाह की बना, थोड़ी देर बैठिए। अब देखिए खाने के बाद चाय, फिर आप उसके बाद पान छालिया खाते हैं, तो नमाज पढ़ के फौरन उठ जाए, ये अच्छा तरीका नहीं। और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों पर फर्ज है। अल्लाह ताला में वक्त मुकर्रर पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ ना रहो, अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो इन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, यानी तुम्हें दर्द होता है तो उनको भी होता है। और तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते, यानी चलो तुम्हें मैदाने जंग में चोट लग भी गई तो अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, दूसरे गिरोह को तो ये भी उम्मीद नहीं। इन आयतों को पढ़ के वाकई लगता है कि अल्लाह अपने हर बंदे से प्यार करता है और अल्लाह ताला दाना और हकीम है। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में इस चीज के मुताबिक फैसला करो जिससे अल्लाह ताला ने तुमको शनास किया है, और खयानत करने वालों के हिमायती न बनो, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है। अब यहाँ से आगे तकरीबन 2 रुकू तक एक वाक्या है। मदीना में एक शख्स था मुसलमान, लेकिन दिल में निफाक आ चुका था। उसने चोरी की और चोरी का सामान एक यहूदी के घर में इस सोच से छुपा दिया कि अगर तलाशी हुई तो इस पे इल्जाम लगेगा और लोग इसको यहूदी समझकर पकड़ लेंगे। मुजरिम ये था, इसके खानदान को भी ये बात पता थी, लेकिन इसके खानदान वालों ने गलत समझते हुए भी इसकी झूठी हिमायत की। जब मुकदमा अल्लाह के नबी के पास पहुंचा तो आप तो बशरी तकाजे से जाहिर है वही देखेंगे जो सामने है, और आपने ये बात अपनी हदीस में भी कह दी, तो क्या हुआ? और उस पे फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत गाइडलाइन दी, मेरे आपके लिए इसको सुनते वक्त क्या है कि बेजा हमायते ना कीजिए, चाहे अपने बच्चे और अपने बहन भाई क्यों ना हो, और इनकी तरफ से झगड़ा ना करो जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं। यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। आप देख रहे हैं कुरान में ज्यादा हकूक लबाद की बातें आती हैं, मामला ठीक कीजिए अपने। वो लोगों से छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, इस वक्त भी अल्लाह ताला इनके पास होता है, इनके तमाम आमाल को वो घेरे हुए है। मीटिंग्स, खुफिया बातें, रातों की बातें, उसको बुरा कहा गया इधर, यानी ऐसे ही दूसरों के खिलाफ तुम रातों को महफिलें सजाते हो। हाँ तो ये हो तुम लोग के दुनिया में तुमने इनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कयामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा, और वो कौन है जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा? जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तगफार करे तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला पाएगा। हम भी यहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह, हमने कभी किसी की बेजा हिमायत की है या किसी बेगुनाह पे इल्जाम लगाया तो हमें मुआफ फरमा दे, और जो गुनाह करता है इसका बोझ उसी पर है, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और पूरी हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई गुनाह या खता करके किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे, इसने बड़ा बुख्तान उठाया और खुला गुनाह किया है, अगर अल्लाह ताला का फजल और रहम तुझ पर ना हो। नोट करिए किसको कहा जा रहा है, प्यारे रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी एक जमात ने तो तुझे बहकाने का कसद ही कर लिया था, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह करते हैं, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने तुझ पर किताब और हिकमत उतारी है और तुझे वो सिखाएगा जिसे तू नहीं जानता, और अल्लाह ताला का तुझ पर बड़ा भारी फजल है। इनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, यानी कानों में बातें नहीं करनी चाहिए, ये महफिल के अदब के भी खिलाफ है। हाँ भलाई इसके मशवरे में है जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे, और जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के इरादे से ये काम करे इसे हम यकीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाजे हो जाने के भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करे और तमाम मोमिनों की राह को छोड़कर चले, यानी शिकाक का रास्ता इख्तियार करे, हम इसे इधर ही मुतवज्जे कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जे हो, और दोजख में डाल देंगे, वो पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। यानी यूनिटी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि हमने यहाँ क्या हिदायत ली। आयत 101 में कसर नमाज का जिक्र था। अगर आपको ये आयतों के नंबर ऐसे ऐसे याद होते गए तो मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप इस दौरे कुरान के बाद अपने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान को भी इम्प्रूव पाएंगे इंशाल्लाह। 102 में सलातुल खौफ का हुक्म था। 103 नमाज पाबंदी के सब फर्ज है। 104 में मुसलमान और काफिरों के अमल का फ़र्क। 105 में खयानत करने वालों की हिमायत करने की ममानियत, और 114 में नजवा यानी कानों में बातें करना, सरगोशियां, उसकी पसंदीदा सूरत क्या है, और 115 इजमाए उम्मत के लिए कुरान से दलील लेना। अल्लाह ताला हमें इतना फहम दे कि हम इसे एक एक बात पे गौर कर सके। फिर दोबारा शिर्क की बात आ रही है, अल्लाह ताला इसे कतन न बख्शेगा कि इसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ़ फरमा देता है, और अल्लाह ताला के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। ये तो अल्लाह को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं, और दरअसल ये सिर्फ शैतान सरकश को पूछते हैं जिसे अल्लाह ने लानत की है। इसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। शैतान की नजर आपके बच्चों और आपके माल पे है, केयरफुल रहिए कि कहीं वो इसमें से कुछ उचक ना ले। और क्या कहा शैतान ने, और इन्हें राह रास से बहकाता रहूंगा, और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और इन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें, और इनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो सरीख नुकसान में डूबेगा। क्या पता चला अल्लाह ताला की तखलीक को बदलने का फितना। आयत 118-119। कैसे? मसलन कम बच्चे खुशहाल घराने का स्लोगन गैर इस्लामिक है। दुल्हन को मेकअप के नाम पर बिल्कुल बदल कर ऐसा कर देना कि वो कुछ और ही चीज बन जाए। इसी तरह लिबास और तर्ज हयात में गैर फितरी रवैये अख्तियार करना। और मेरी नजर में सबसे बड़ा शैतान का मंसूबा है कि मकसद हयात से गाफिल करके दूसरी चीजों में डाल देना। करने क्या आए थे और करके क्या जा रहे हैं, और शैतान के क्या चालें। वो इनसे जुबानी वादे करता रहेगा और सब्ज बाग दिखाता रहेगा, मगर याद रखो शैतान के जो वादे इनसे हैं वो सरासर फरेब कारियां हैं। यानी डोंट फियर, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नुम है, जहां से इन्हें छुटकारा न मिलेगा। इसके बरक्स और जो लोग ईमान लाएं और भले काम करें, हम इन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां ये हमेशा हमेश यानी अबदुल आबाद तक रहेंगे। ये है अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा हो। हकीकत हाल ना तो तुम्हारी आरजुओं के मुताबिक है, और न अहले किताब की उम्मीदों पर मौकूफ है। जो बुरा करेगा इसकी सजा पाएगा, और किसी को ना पाएगा जिसकी हिमायत और मदद अल्लाह ताला के पास कर सके। जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वह नेक अमल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, और खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी इनका हक मारा न जाएगा। अल्लाह तोल तोल के हक देगा हक वालों को। दीन किसका अच्छा है? बाएतबारे दीन इससे अच्छा कौन है जो अपने आप को अल्लाह के ताबे करे, और वो हो भी नेकुकार, साथ ही यकसुई वाले इब्राहिम के दीन की पैरवी कर रहा हो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ये चारों खूबियां हमारे अंदर भी डाल दे। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। एक सेकंड गौर कर लीजिए, और अल्लाह ताला हर चीज को घेरने वाला है। आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप कह दीजिए खुद अल्लाह इनके बारे में हुक्म दे रहा है। और कुरान की वो आयतें जो तुम पर यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं, कहाँ पढ़ी हमने? सूरत निसा के शुरू में। जिन्हें इनका मुकर्रर हक तुम नहीं देते, और इन्हें अपने निकाह में लाने की रग़बत रखते हो, और कमजोर बच्चों के बारे में, और इस बारे में कि यतीमों की कारगुजारी इंसाफ के साथ करो। तुम जो नेक काम करोगे बिला शुबा अल्लाह ताला इससे पूरी तरह जानने वाला है। अब फिर पीछे हमने पढ़ा कि औरत में नशूस हो तो मर्द किस प्यार से समझाए। अब इधर इशारा है मर्द की तरफ से, कुछ बात है, मर्द दिलचस्पी नहीं ले रहा एक औरत में उसकी किसी कमी की वजह से, बस बच्चे नहीं हैं, या औरत और मर्द में फर्क बहुत है। तो अब औरत को डर है कि ये मुझे छोड़ देगा, तो फरमाया कि थोड़ा सा कुछ ले दे के कॉम्पनसेट कर लो। अगर किसी औरत को अपने शोहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में सुलह कर लें, इसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बेहतर चीज है, तमा हर नफ्स में शामिल कर दी गई है, यानी अपना फायदा शुख। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजकारी करो तो तुम जो कर रहे हो इस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। तुमसे ये कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो। तमाम बीवियां तो छोड़िए, हमारे कल्चर में तो माँ और बहन और बीवी में अदल नहीं कर पाते। कभी कभी माँ को एक तरफ ले जाते हैं, कभी बीवी को। तो मर्दों के लिए इसमें हुक्म है कि रिश्तों को निभाते वक्त किसी एक को खुश करते करते दूसरों को नाराज ना कर दो। फिर सुनिए, तुमसे ये कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह से अदल करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश और कोशिश कर लो, एक को नहीं खुश कर पाते, कहाँ बाकियों को करेंगे। इसलिए बिल्कुल ही एक की तरफ मायल होकर दूसरी को इधर लटकती ना छोड़ो, और अगर तुम इसलाह करो और तक्वा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत और रहमत वाला है। और अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाए, नहीं बन सकी, हर मुमकिन कोशिश की, कुछ होते ही ऐसे लोग हैं तो फिर क्या, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू ना बनाओ इसको। आगे देखो, याद रखिए जिंदगी के सफर में आगे देखिए, बहुत कुछ अल्लाह के पास आपके लिए, शर्त एक है कि आप अपना किबला बदल लें, अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह की किताब को अपनी जिंदगी में ले आए, खप जाएं इसमें, देखिए अल्लाह आपको कैसा साथ देगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। क्या करेगा अल्लाह, तो अल्लाह ताला अपनी वुस्सत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला वुस्सत वाला, हिकमत वाला, यानी उस शौहर को दूसरी को अच्छी बीवी दे देगा और बीवी को कोई दूसरा अच्छा मर्द दे देगा। जमीन और आसमान की हर हर चीज अल्लाह ताला ही की मलकियत है। वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म दिया कि अल्लाह ताला से डरते रहो, अगर तुम कुफर करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह ताला बहुत बेनियाज और तारीफ किया गया है। अल्लाह ताला के इख्तियार में आसमानों की सब चीजें और जमीन की भी, और अल्लाह ताला कारसाज काफी है। अगर इसे मंजूर हो तो ऐ लोगो वो तुम सबको ले जाए। जरा सोचिए, पारे का अख्तिताम है, बस अपने आप को टटोलिए। अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए, अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला, कोई इतना ना अकड़े कि मैं चला गया तो मेरी बीवी को कोई अच्छा शौहर नहीं मिलना और मैं चली गई तो इसको अच्छा नहीं मिलना, अकड़ने की तो यहाँ गुंजाइश नहीं, और कहाँ फिर ये अकड़ अल्लाह के मामले में कोई दिखाए। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता है तो याद रखो कि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया और आखरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। आप पारे के आखिर पे यहाँ से ईमान वालों को और इसके आखिर में बहुत ही खूबसूरत आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अदल और इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनूदिए रब के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। अल्लाह हमें इसमें शामिल कर ले। गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों अजीजों के, वो शख्स अगर अमीर हो तो और फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह ताला को ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना। अगर तुमने कच बयानी की या पहलू तही की, यानी वो काम ना किया, तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस किताब पर जो इसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है और इन किताबों पर जो इससे पहले नाजिल फरमाई गई है, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके फरिश्तों से और इसकी किताबों से और इसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफर करे, वो तो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। अल्लाह में गुमराहियों में गिरने और भटकने से बचा। इसके बरक्स एक वो गिरोह जिसका जिक्र कभी अच्छा नहीं लगता, नोट कीजिए, मैं चंद बातें बोल दूं ताकि आप मजीद फोकस्ड हो जाएं। सूरत अल बकरा के शुरू में रुकू नंबर 2 में हमने मुनाफिकीन की निशानियां और अलामतें जानी थी। यहाँ अब ये दूसरा पैकेज है कुरान पाक में कि जहाँ निफाक की कुछ हरकतें जिसको निशानियों से इंसान जान सकता है, और वो क्या है, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और फिर गए, फिर ईमान लाया, फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में भड़ गए, यानी कुफर और ईमान की आंख मिचोली का नाम निफाक है। ऐसे बल्ब को भी उतार देते हैं, कहते हैं ये जल जाएगा। याद रखिए मुनाफिक का ईमान जलने के करीब होता है। अल्लाह ताला यकीनन इन्हें ना बख्शेगा और ना इन्हें राह राह समझाएगा। मुनाफिकीन को इस बात की खबर दे दो कि इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है। कैसा अंदाज है जिनकी हालत ये। अब यहां से अलामतें आप नोट करेंगे कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, यह है रूट कॉज, निफाक आता इस रास्ते से है। क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं, तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। हम कहते हैं वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो बहुत ग्रेसफुल लगेंगे, अल्लाह कहते हैं नहीं, इज्जत तो मेरी बातों को मानने में है। और अल्लाह तुम्हारे पास अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में इनके साथ ना बैठो। किसी मजबूरी का नाम ना लें, फलां की खुशी, फलां का रजा, गलत जगह पे नहीं बैठना, चाहे अपने सगे बेटे ने कोई फंक्शन ऐसा रखा हो या बेटी का घर हो, जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी इस वक्त उन्हीं जैसे हो। तो मुनाफिक तकल्लुफात में या मजबूरियों के नाम पे गलत मजलिसों का हिस्सा बन जाता है। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकीन को जहन्नुम में जमा करने वाला था। वहां तुम अपनी खुशी से बैठे थे गलत कामों को देखते हुए, जहन्नुम में तुम्हें मजबूर किया जाएगा। तो क्या पता चला कि अल्लाह और रसूल के अहकामात का कौल या अमल से मजाक उड़ाना क्या है? आयत 135 से 40 की रोशनी में आप देखिए, जितनी फहाशी उतने मॉडर्न, ये है फितना। मौसीकी की महफिलें जान रूह की गजा, शादी ब्याह की तकरीबात जिसमें नाच गाना कहते हैं फन, खुशी, रौनक, मेला, और वैलेंटाइन डे के नाम पर पार्टीज जो कभी सुनी भी नहीं थी, हमारे बापों ने भी ना सुनी होंगी, दादा की तो क्या बात थी। अल्लाह हमारी ये जहालत दूर कर दे। ये लोग तुम्हारे इंजामे कार का इंतजार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह फतह दे तो ये कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथी नहीं? और अगर काफिरों को थोड़ा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं, क्या हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे? और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था? बस क्यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज राह ना देगा। इन्नल मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियां कर रहे हैं, धोखेबाज, और वो इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कुसाला, दूसरी नोट कीजिएगा, अलामत निफाक की, नमाजों में सुस्ती, बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं अगली खूबी, और याद इलाही तो यूं ही बराए नाम करते हैं, यानी इनको अल्लाह कहाँ याद आना है अगर नमाज में भी याद नहीं आता। वो दरमियान में ही मुअल्लक डगमगा रहे हैं, मुजब्जबीन बैन ज़ालिका, दो कश्तियों के सवार, उस बकरी की तरह जो दो भेड़ियों के बीच में है, ना पूरे इनकी तरफ ना सही तौर पर उनकी तरफ। तो फैसला सुन लीजिए अल्लाह का, जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो इसके लिए तू कोई राह ना पाएगा। ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अब इलाज बताया जा रहा है, पीछे बीमारी थी, अलामतें थी, अब इलाज, कैसी दोस्तियां छोड़ दो? क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे, नामुमकिन है कि तू इनका कोई मददगार पा ले। और आप जानते हैं कि तन्नूर में सबसे ज्यादा गर्म जगह नीचे वाली होती है, और इसका नाम हाविया है, हवा से, हवा कहते हैं ख्वाहिश को। तो निफाक की एक बहुत बड़ी वजह हवा, झूठी ख्वाहिशें, तो वो जहन्नुम में जाएंगे गहराइयों में। तो अब क्या करें, इतना बुरा अंजाम निफाक का। तो अब आखिरी आयतों में चार नुकाती इलाज। इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वअतसमू बिल्लाहि वअख्लसू दीनहुम लिल्लाहि फाउलाइका मअल मुमिनीन। हाँ, जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखें और खालिस अल्लाह ताला ही के लिए दीनदारी करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बड़ा अजर देगा। अल्लाह हमें निफाक से बचाकर ईमान में ले आए। और आखिरी आयत को जरा से 2 सेकंड के गैप के बाद सुनिए, रिलैक्स कीजिए खुद को। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है, मैं क्यों मारूंगी तुझे, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला हमें सोचने पे माइल करता है कि क्यों मैं दूंगा तुम्हें सजा? कोई मुसव्विर अपनी तस्वीर को आग में डालता है? कोई खाना पकाकर उसको गिराता है? तुम तो मेरी प्यारी मखलूक हो, तुम तो मेरे बंदे हो। तो फिर अल्लाह जी, हम क्या करें इस अजाब से बचने के लिए? 2 शर्तें हैं, इन शकर तुम व आमन तुम। अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बाईमान रहो, अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है, तुम्हारे अंदर शुक्र आएगा तो उससे ईमान खुद ही बढ़ जाएगा, और अगर ईमान आ गया तो तुम अल्लाह के हुक्मों को भी याद रखोगे। क्या पता चला कि अल्लाह ताला बंदे को आग में नहीं डालना चाहता, बंदा खुद को आग में डालना चाहता है। अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा के रखे। तो क्या पता चला हमें आयत नंबर 142 से 147 में? पहली बात है, मुनाफिक की नमाज सुस्तियों वाली होती है। शुक्रगुजारी कैसे करनी है, उसकी बात मान के अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बुराइयों से इज्तनाब करना है, और सब कुछ होते हुए ना शुक्री का फितना अपने ऊपर नहीं आना। जितने शुक्रगुजार होंगे अल्लाह उतना ही देगा। इस इल्म की कदर अल्लाह मुझे आपको करने वाला बना दे। यहाँ पे पारा पूरा हुआ, चंद जेम्स ले लीजिए, सुनहरे हरूफ, شریعت بمقابلہ شہوت، عورت کی آزادی کا فتنہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، مرد سربراہ خاندان ہے ہر روپ میں، دین اسلام جامع نظام حیات ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا اپنا سلوگن بنا لیجئے، اسلامی معاشرے کا قیام کرنا ہے انشاءاللہ اور نفاق سے پرہیز کرنی ہے۔ فتنہ بہت زبردست تھا تو اب اس کا حل لے لیجئے۔ پہلی بات جو بہت اہم ہے کہ سوچ میں تبدیلی لانی ہے، کہ ہماری شہوات اور مرضی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور مرضی اہم ہے، قرآن و سنت سے واقفیت اور دین اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو پہچاننا ہے اور اپنے اور اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے، حلال رزق کا اہتمام اور شریعت و تقویٰ والی با مقصد زندگی بسر کرنی ہے، اپنا رول ماڈل مغربی لوگوں کی بجائے انبیاء، صحابہ کرام، امہات المومنین اور صحابیات کو بنانا ہے، شریعت کے احکام اگر مشکل لگیں تو سینے کے کھلنے کے لیے دعائیں مانگنی ہے اور توبہ استغفار کرنی ہے، ضروریات اور خواہشات کے فرق کو سمجھتے ہوئے، یعنی نیڈز اینڈ وانٹس کا فرق سمجھنا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، ہر سطح پر اسلامی شریعت کا نفاذ کرنا ہے اور میڈیا کو مسلمان بنانا ہے، یعنی غلط چیزوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو پرموٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے مسلم حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہ وہ غیر اسلامی ایجنڈوں پہ چلنے والی این جی اوز کو شائع ہونے سے، پبلش ہونے سے رکیں اور ایسی تحریکوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح اس فتنے کے خاتمے کے لیے مذہبی اور دینی جماعتوں اور علماء اور سب مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ فتنے کے خاتمے کے لیے اس پر یقین رکھنا اور یہ یقین دوسروں کو دلانا ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام عین فطرت کے مطابق اور اسلام عورتوں کے حقوق کا مضبوط قلع اور محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ کام لے لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے، اور ہم پر رحمت اور مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔